धन्यवाद भाई गौरमन, प्रभु आपको आशीष दे। सुप्रभात मित्रों, इस आराधनालय में यहाँ फिर से इस सुबह होना अच्छा है। और जैसे ही मैं अंदर आया, वहाँ पीछे खड़े होकर सुन रहा था और भविष्यवाणी को आगे जाते हुए सुन रहा था, अर्थात अन्य जुबानों में बोलने के माध्यम से उसके अनुवाद के साथ। और मैंने लोगों से कहा कि वह कमरा भी भरा हुआ है, सो मैंने कहा मैं नहीं जानता, मैंने इस व्यक्ति से बात नहीं की, यह भाई हीगन बॉथम ही थे, यदि मैं सही व्यक्ति को पहचान रहा हूँ। बहुत लंबे समय से लेकर यह महीनों हो गए हैं कि मैंने उनसे हाथ नहीं मिलाया है, लेकिन ठीक यही है जिस पर मैं बोलने वाला हूँ, जो उसने कहा आज सुबह को, बिल्कुल ठीक इसी पर मैं बोल रहा हूँ। उसे ये नहीं पता था, थोड़ी देर पहले मुझे स्वयं भी नहीं पता था कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, और बस यही बात उन्होंने उस समय कही। इसलिए हम ये जानकर खुश हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे हुए हैं और उसके सुरक्षा करने वाले पंखों के नीचे। अब मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग खड़े हुए हैं, स्थान भरे हुए हैं और जाम है, और हमें इस तरह से देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। और जितना जल्दी हो सके हम यहाँ से इसे अलग ही बनाएंगे, एक बड़ा आराधनालय। अब मैं फिनिक्स से बस जल्दी से रिपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं पिछले रविवार की रात यहाँ था और प्रभु बोझ के विषय पर बोला था। प्रभु बोझ सेवा से पहले, प्रभु बोझ या कम्युनियन का मतलब रोटी लेना नहीं है, प्रभु बोझ का मतलब है किसी से बात करना, जवाब में बोलना, किसी के साथ बात करना। और अब आज सुबह यदि मैं थोड़ा ज्यादा समय लेता हूँ, इसलिए कोई तो उन लोगों के साथ सीट को बदलते रहे जो लोग खड़े हुए हैं, और इसकी सराहना की जाएगी, उन्हें थोड़ी देर के लिए बैठने दें। मैं इस समय के लिए चिंतित हूँ जिसमें हम रह रहे हैं, मैं बहुत बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। जब मैं उन चीजों को होते हुए देखता हूँ, जिसे मैं जगह लेते हुए देखता हूँ, तो मेरे भीतर कुछ तो चीज है जो बेचैन हो जाती है, और मैं बस अपना समय लेना चाहता हूँ और कोशिश करूँगा। आज सुबह के संदेश में मैं एकत्व के विषय पर बोल रहा हूँ, और मैं अपना समय लेना चाहता हूँ और इसे ठीक वैसा ही बनाने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैं इसे उतनी ही अच्छी तरह से सामने रखूँगा जितना मैं जानता हूँ, और मैं आपकी प्रार्थनाओं की इच्छा करता हूँ जैसे कि आप एकत्र हुए हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि यदि आपके पास बाइबल है और आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले इब्रानियों का पहला अध्याय पढ़ें, और मैं इब्रानियों के पहले अध्याय के पहले तीन पदों को पढ़ना चाहता हूँ, और फिर उत्पत्ति 1:26-7 को, ताकि इसे एक साथ जोड़ें। और कोई भी मनुष्य कुछ भी ऐसा नहीं कह सकता है जो कहने के लिए उचित हो, जब तक परमेश्वर उसे ये कहने में सहायता नहीं करता है। और आज सुबह के संदेश के साथ भी ऐसा ही है, लोगों और परमेश्वर के एकत्व के विषय में। अब इब्रानियों के पहले अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और समय समय से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के जरिए से बातें की है, अपने पुत्र के द्वारा, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है, जो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके व्यक्ति के छवि को प्रकट करता है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। जब वो स्वयं हमारे पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। और अब उत्पत्ति में उसका पहला अध्याय और 26वां और 27वां पद मैं इसे पढ़ता हूँ। और परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं पर अधिकार रखे, और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार सृष्टि की, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब आइए हम प्रार्थना करते हुए कुछ क्षण के लिए अपने सिरों को झुकाएं, और मुझे यकीन है कि इतनी अधिक संख्या के श्रोतागण के पास बहुत सी विनतियां हैं, इसलिए संभव हो तो हम अपना हाथ परमेश्वर की ओर उठाएं, जिसके पास एक विनती है और उसके द्वारा उसे ये प्रकट करें कि हमारे पास कुछ तो है जिसके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। परमेश्वर आप में से हर एक को प्रदान करे।
Lord, we have assembled under the roof of this tabernacle.
प्रभु हम इस आराधनालय की छत के नीचे एकत्र हुए हैं और हम आज अपने ऊपर छत पाकर आभारी हैं।
But our coming together was for a greater purpose than
लेकिन हमारा एक साथ आना इससे भी बड़े उद्देश्य के लिए है। हम यह महसूस करते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा के द्वारा हम स्वर शक्तिमान के पंखों के नीचे एकत्र हुए हैं कि वह जैसे एक मुर्गी अपने चूजों को ढक लेती है उसी प्रकार से वह हमें उन सभी चीजों से रक्षा करेगा जिनसे कि हम चाहते हैं हमारी रक्षा करे, कि वो हमारे ऊपर मंडराए और हमारा पोषण करे और हमें आज की हमारी प्रतिदिन की रोटी दे, दोनों शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से, ताकि हमें धरती पर चलने फिरने के लिए शरीर को संभालने वाली शक्ति प्राप्त हो सके और पवित्र आत्मा की संभालने वाली सामर्थ्य प्राप्त हो सके परमेश्वर के वचन को भूखे लोगों के पास लाने के लिए, और हम यहाँ से इसे अपने होठों और अपने हृदय में लेकर निकलें इस तरह के ताजे अभिषेक के तेल के साथ कि हम दूसरों को इस दिन के लिए बताने में सक्षम हो जिसमें हम रह रहे हैं और ऐसे समय की परिस्थिति को बता सकें। परमेश्वर हमें आप पर पूरा भरोसा है, कोई भी और स्थान नहीं बचा जहाँ कोई भी जा सके। हम भी वैसा ही महसूस करते हैं जैसा पतरस ने उस दिन किया था जब यीशु ने कहा था क्या तुम भी जाना चाहते हो। उसने कहा प्रभु हम कहाँ जाएं, केवल तेरे पास ही अनंत जीवन के वचन हैं, और इसी कारण आज सुबह हम आपके नाम में एकत्र हुए हैं क्योंकि केवल आपके पास ही अनंत जीवन के वचन हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसे आज हम में से प्रत्येक के लिए इतना वास्तविक बना देंगे कि हमारे हृदय के भीतर आग जल उठेगी, हमारे प्राण शक्ति को पाएंगे, हमारे शरीर चंगे हो जाएंगे, हमारी आत्माएं चंगी हो जाएंगी, हमारे प्राण नए बन जाएंगे, हमें उस ढंग से बनाया जाएगा जैसा परमेश्वर हमें चाहता है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें शक्ति प्रदान करें जो कमरों में और दीवारों से टिककर चारों ओर खड़े हुए हैं और आसपास के गलियारों में खड़े हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें शक्ति दें, और ये जानते हुए कि ये टेप हो रहा है ये बहुत से भिन्न भिन्न राष्ट्रों में जाएंगे, बाहर उन देशों में और धरती की भिन्न जातियों के पास, और परमेश्वर हम पूरी तरह से आप पर भरोसा करते हैं। हमें बस शक्ति को देना और उस वचन और उस अभिषेक को देना कि ये सब उसी प्रकार से हो सके जैसा आप इस घड़ी के लिए चाहते हैं। अब हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, हमारा सुनना, हमारी आवाज, हमारा ध्यान, जो कुछ भी हम हैं, हम आपको समर्पित करते हैं कि हम में से होकर आप आगे बढ़ें।
And manifest your great presence with us, for we asked it in Jesus' name.
हमारे जरिए से काम करें और आपकी महान उपस्थिति को हमारे साथ प्रकट करें, क्योंकि हम इसे आपके पुत्र यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।
The word oneness means to be one with.
एकत्व शब्द का अर्थ होता है उसके साथ एक होना, एकत्व, एकजुट होना। और अब यह पूरी तरह से एक विषय है, और यह विषय उससे कहीं अधिक ध्यान देने योग्य है जितना मैं इसे दे सकता हूँ, और धरती का कोई भी व्यक्ति जितना दे सकता है उससे भी अधिक। लेकिन मैं आपको इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूँ और साथ ही जो परमेश्वर हमें देगा। अब इसमें ये शिक्षा का उपदेश दिया जा रहा है, और भाइयों के लिए जो हो सकता है इस टेप को सुने, मैं विश्वास करता हूं कि यह एक ठोकर का कारण नहीं होगा, लेकिन यह आपको इस बात पर बहुत ही गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित करेगा कि आप इसका अध्ययन प्रार्थना पूर्वक ध्यान पूर्वक करेंगे और इसे परमेश्वर के वचन के तराजू में तौल कर देखेंगे कि यह परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि इसी तरह से हमें हमेशा करना चाहिए, वचन के साथ चीजों को तौलना चाहिए, क्योंकि केवल वचन ही वो चीज है जो कि बनी रह सकती है। यीशु ने कहा, आकाश और धरती दोनों टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए मैं इसका विश्वास करता हूं और इसे परमेश्वर की योजना होने का विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यह परमेश्वर का पूरा किया हुआ काम है जो वचन में लिखा हुआ है। इसलिए यदि कोई भी चीज उस वचन के विपरीत होगी तो यह परमेश्वर या परमेश्वर की योजना नहीं हो सकती है। मैं विश्वास करता हूं कि यह वो योजना है। अब वचन में परमेश्वर का आत्मा वचन को स्वयं से जीने को लगाता है, स्वयं से काम करने को लगाता है। यह वचन को जीवन में लाता है, एक बीज के समान। अब पहला पुरुष और पहली स्त्री अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ सिद्ध तालमेल में थे, इतना अधिक कि परमेश्वर किसी भी समय नीचे आ सकता था जब भी वो चाहे, और आदम और हवा के साथ सीधा सीधा बात कर सकता था। अब यही सिद्ध एकत्व है, परमेश्वर और उसकी सृष्टि। परमेश्वर आदम और हवा के साथ सीधा सीधा बोल रहा है, और वे परमेश्वर के साथ इतने सिद्ध तालमेल में थे, यहाँ तक कि वे परमेश्वर के साथ एक हो गए थे। परमेश्वर और उसका परिवार एक था। कोई भी मनुष्य और उसका परिवार एक सही सही अच्छा कुलीन आज्ञाकारी परिवार एक दूसरे के साथ एक होता है, कोई भी परिवार। और यदि परिवार में कुछ तो ऐसी बात होती है जो उन्हें अलग करती है, तो यह ठीक नहीं है। परिवार कहीं न कहीं टूटा हुआ होता है। उन सभी को एक होना चाहिए, पिता को माता के साथ, माता को पिता के साथ, माता पिता के साथ बच्चे, बच्चों के साथ माता पिता, सभी एक ही सहमति में। और जब आप ऐसा देखते हैं तो आप एक सुंदर तस्वीर को देखेंगे। यही तो परमेश्वर का उद्देश्य है, और पिता के रूप में उसका उद्देश्य सर्वोच्च उसके परिवार के साथ एक होना था। धरती पर का परिवार आदम और हवा थे, और केवल एक ही तरीका है कि वे परिवार के साथ एक हो सकते हैं या परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव उनके अंदर था। इस प्रकार उनमें परमेश्वर का स्वभाव आ गया, और फिर वे एक दूसरे के साथ तथा परमेश्वर के साथ पूरी तरह से एक बन गए। क्या यह एक सुंदर तस्वीर नहीं है? परमेश्वर अपने परिवार में है, सभी के ऊपर पिता सर्वोच्च। कोई मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं, कोई हृदय का दौरा नहीं, कुछ भी नहीं, केवल अकथनीय आनंद। कभी भी बीमार नहीं होना है, कभी भी हृदय का दौरा नहीं पड़ना है, बस परमेश्वर के साथ एक। क्या ही एक तस्वीर है, क्योंकि इन लोगों में वही परमेश्वर का स्वभाव था, और इसलिए जो कुछ उन्होंने किया वे केवल परमेश्वर के साथ साथ चले, और परमेश्वर ने उनके साथ होकर उन्हें एक बना दिया। अब यीशु ने यूहन्ना 17वें अध्याय और 11वें पद में प्रार्थना की। ये आपके लिए है जो संडे स्कूल के मूल पाठ को लिख रहे हैं। आज सुबह मेरे पास उनमें से बहुत से वचन हैं। यूहन्ना 17:11 यीशु ने प्रार्थना की कि कलीसिया और वो एक हो जाएं, जैसे वो और पिता एक हैं, कि कलीसिया हम मसीह की देह के सदस्य के रूप में एक हो जाएं, एक साथ, ठीक वैसे ही जैसे वो और पिता एक हैं। और उस दिन हम जानेंगे कि वह पिता में था, पिता उसमें था, और वो हम में, कि हम सब मिलकर एक हों। क्या ही एकता, यही वो एकत्व होगा कि देखें परमेश्वर उसकी कलीसिया में है, इतना तक कि हर एक सदस्य ठीक सिद्ध रूप से एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ तालमेल में हो। यही वो कलीसिया है जिसके लिए यीशु आ रहा है। यही है जब उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा कि हम एक हों। और यही एकमात्र संगति का आधार है जिसे परमेश्वर ने कभी अपने लिए और अपनी कलीसिया के लिए निर्धारित किया है। यही लोगों में उसकी खुद की एकात्मकता है। यही संगति का एकमात्र आधार है और केवल एक ही तरीका है कि आपके पास वे आधार हो सकते हैं, वो है उसके साथ हमेशा के लिए एक हो जाना। ठीक वैसे ही जब आप अपने पति के साथ एक हो जाती हैं, स्त्री अपने पति के साथ एक हो जाती है, यह एक प्रतिज्ञा है जब तक मृत्यु नहीं आती। अब फिर जब आप परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं तो यह वही चीज है कि कलीसिया मसीह के साथ एक हो जाती है। यह तब तक है जब तक मृत्यु हमें अलग न कर दे। और तब यदि आप कभी भी पाप या कुछ भी गलत नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ अनंतता के लिए एक हो जाएंगे। और केवल मृत्यु ही आपको परमेश्वर से दूर ले जा सकती है, और न ही शारीरिक मृत्यु लेकिन पाप की मृत्यु। पाप मृत्यु है और यह आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है। सो उसकी सामर्थ्य की आत्मा में उसके साथ एक होना ये अनंत जीवन है। आप परमेश्वर के साथ अनंतता के लिए एक हो जाते हैं। ओह, मैं थोड़ी देर के बाद इस बात को लेना चाहता हूँ। अनंत परमेश्वर के साथ अनंतता के लिए एकता, उसके साथ सिद्ध तरह से तालमेल में, सिद्ध रूप से एक साथ एक होना, एक कलीसिया जिसमें सभी दोनों परमेश्वर और उसकी कलीसिया एक होते हैं, एक साथ एकजुट हैं। और यदि आप ध्यान देंगे कि कैसे आदम के साथ हवा एक हो गई थी, वह उसका भाग बन गई। परमेश्वर, क्या आपने उत्पत्ति 1:27 में ध्यान दिया? उसने मनुष्य को नर और नारी करके बनाया, उसने उनकी सृष्टि की। और मनुष्य एक नर और नारी दोनों था जब ये स्त्रीत्व और पुरुषत्व की आत्मा में अस्तित्व में आया। तब परमेश्वर ने उसकी बगल से एक पसली को लिया। क्या आपने ध्यान दिया कि शरीर का भाग उप उत्पादन था लेकिन आत्मा नहीं? स्त्री के शरीर का भाग एक उत्पादन था। सृष्टि के काम की समाप्ति होने के बाद परमेश्वर ने आदम की बगल से एक फसली को लिया और एक स्त्री को बनाया, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा आदम का भाग था क्योंकि वह पुरुष और स्त्री दोनों था। आत्मिक रूप से बोल रहा हूँ, दोनों पुरुष और स्त्री। अब क्या आप उस महान तस्वीर को नहीं देखते हैं? हम देह में भिन्न हैं, हम एक उत्पादन के जैसे हैं, एक सृष्टि किए हुए अस्तित्व पवित्र विवाह के बंधन के द्वारा। लेकिन आत्मा में हम बेटे और बेटियां हैं, ना ही कोई दूसरी आत्मा लेकिन जीवित परमेश्वर की आत्मा। हम उसकी समानता में हैं, उसकी एकता में, जीवित परमेश्वर के सिद्ध स्वरूप में, क्योंकि हम बेटे और बेटियां बन जाते हैं। ना ही अलग किए गए लेकिन वही आत्मा, वही परमेश्वर, वही व्यक्ति अनंतता के लिए पवित्र विवाह के बंधन में जुड़ गए हैं। देखो कि परमेश्वर ने किस तरह से इसकी योजना बनाई कि हमें भिन्न नहीं होना चाहिए लेकिन वही होना होगा। ना ही किसी और जाति का कोई और अस्तित्व लेकिन एक सच्ची एकता और सर्वशक्तिमान का वंश जिसे एक पवित्र मिलन के द्वारा किया गया। अब वो शरीर माता और पिता से आता है लेकिन आत्मा परमेश्वर से आता है। परमेश्वर स्वयं को अलग करता है जैसे कि आदम को अलग किया गया था। पेंटिकॉस्ट के दिन पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा अग्नि का स्तंभ जो स्वयं को अलग कर रहा था और उस कलीसिया के प्रत्येक सदस्य के ऊपर आकर ठहरता है। परमेश्वर अपने आप को एक साथ रख रहा है। तब उन लोगों के झुंड के साथ मिलकर ये क्या करता है? प्रभु यीशु की एकीकृत की हुई देह को वापस लाता है एक साथ आते हुए। और आज इस बड़े अलगाव में जिसमें हम रह रहे हैं, सांप्रदायिक मतभेद और इत्यादि हैं, क्या ही दयनीय बात है, कितनी शर्म की बात है। अनंत परमेश्वर के साथ स्वर्गीय विवाह के बंधन में बंधे हुए उसका भाग, परमेश्वर का भाग, शरीर में मैं ब्रह्नम बन गया मेरे पिता की वजह से। जो ब्रह्नम है, आप अपने पिता और माता के भाग बन जाते हैं, लेकिन आत्मा में हम परमेश्वर के साथ एकता में आ जाते हैं, परमेश्वर का भाग होते हैं। यही कारण है कि आत्मा मर नहीं सकता है। वह जो मुझ पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है, और उस स्वरूप में जो वो यहाँ धरती पर है और उसकी समानता में मैं उसे अंतिम दिनों में जिलाकर खड़ा करूँगा। न ही एक आत्मिक अस्तित्व, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की महिमामय देह के समान एक देह होगी, प्रभु की महिमावंत देह जो उस स्वरूप में उठकर खड़ी होगी। यीशु ने कहा लाजरस की कब्र की ओर जाते हुए, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी वह जीवित रहेगा, और जो कोई भी जीवित है और मुझ में विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। मुझ में विश्वास करता है, ना ही मुझ पर, लेकिन मुझ में, उसमें विश्वास करते हुए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, उसमें विश्वास करता है। ओह प्रभु, मैं आशा करता हूँ कि पवित्र आत्मा इस बात को आपको समझाएगा। अब आप छोटे झुंड हैं, यही कारण है कि सारे सप्ताह भर प्रार्थना करते हुए और परमेश्वर से मांग रहा था, मैंने इस विषय को चुना ताकि आपको दिखा सकूं कि हम कहां पर खड़े हैं। उसमें विश्वास करना, आप उसमें विश्वास नहीं कर सकते जब तक आप उसमें नहीं आ जाते, या वह आप में नहीं आ जाता है। तब आप उसमें विश्वास करते हैं, तब आपके पास अनंत जीवन होता है। आप उस पर विश्वास कर रहे होते हैं, जब तक आप अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर लेते, उसके बाद अनंत जीवन परमेश्वर का जीवन है जो आप में होता है, तब आप उसमें विश्वास कर रहे होते हैं। तुम मुझ में, मैं तुम में, जिससे कि वे एक हो सकें, पिता, यहाँ तक कि जैसे आप और मैं एक हैं।
God in Christ, Christ in the church.
परमेश्वर मसीह में, मसीह कलीसिया में, समझे, जैसे हम एक हैं, वैसे ही वे भी एक हो जाएं।
How can you be one if ye abide in me?
फिर आप किस तरह से एक हो सकते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में, देखो बने रहो, मेरा वचन तुम में, तो जो चाहो मांगो। क्योंकि यह अब आप नहीं रहे, यह वो वचन है जो आप में है, और वचन परमेश्वर है। अब परमेश्वर का वचन एक तलवार है, इब्रानियों 4 अध्याय ऐसा कहता है, इब्रानियों 4:12। अब यह एक तलवार है, और एक तलवार पूरी तरह से निष्क्रिय रहती है यदि इसे हाथ या किसी शक्ति के द्वारा नहीं चलाया जाता है, और यह, लेकिन इसे एक हाथ की जरूरत होती है कि उस तलवार को पकड़े, और उस हाथ की जरूरत है जो इस तलवार को पकड़ता है, यह विश्वास का हाथ होता है। अब विश्वास का वो हाथ यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कितना मजबूत है। यह विश्वास का हाथ शायद बस इतना ही मजबूत हो कि अंधकार में से होते हुए एक छोटे से छेद को करे और कहे, विश्वास के द्वारा मैं बच गया हूँ। वह एक बड़ा वार है, लेकिन अब यदि उस हाथ में उस तलवार को चलाने की बस उतनी ही शक्ति है तो वह उतना ही काट सकता है, लेकिन यदि यह एक मजबूत हाथ है तो यह शैतान जो कुछ भी सामने रखेगा, हर एक चीज को सीधा सीधा काट कर आर पार कर देगा। उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा को चमकाएगा। यदि यह एक विश्वास का मजबूत हाथ है, अद्भुत कार्यों के दिन यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, उसके मार्ग को काट कर बनाता है। यह तलवार के पीछे जो उस हाथ की सामर्थ है उस पर निर्भर करता है, और वो तलवार बहुत ही तेज होती है। इब्रानियों 4 ने कहा, यह दोधारी तलवार से भी तेज है, जो आते और जाते दोनों ओर से काटती है, और यहाँ तक कि वो हड्डी के गूदे गूदे और जोड़ों में जाकर और हृदय के विचारों को एक परखने वाली होती है। यह भौतिक क्षेत्र से परे जाकर यह आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करती है और हृदय के विचारों को उठाकर और उन्हें प्रकट करती है, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन। अब यदि वहाँ उस वचन के पीछे उसे भीतर तक काटने के लिए मजबूत हाथ हो, तो वह भीतर तक जाएगा और हर एक प्रतिज्ञा को काट कर और इसे आपको दे देगा। यदि आपके पास इसके पीछे बस इतना मजबूत हाथ है, वो तलवार जो इसे विश्वास के एक हाथ में उठाए, इसे कस कर पकड़ ले, इसे मजबूती से पकड़कर और चलकर शत्रु के सामने जाए। वो खतना रहित शत्रु भला कैसे कभी अनंत परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हो सकता है? इसलिए आप वचन की तलवार को लें और हर एक प्रतिज्ञा आपकी है, इसे विश्वास के मजबूत हाथ में उठा लें, आगे बढ़ें। यदि आपको चंगाई की आवश्यकता है तो इसे वचन के साथ काट डालें। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। यदि आपको उद्धार की आवश्यकता है तो बाइबल की हर एक प्रतिज्ञा आपकी है। यह वहाँ पीछे रखी हुई है और शैतान इसे छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार को ले लो और अंधकार में से होते हुए आगे बढ़ें, जब तक कि परमेश्वर का उजियाला आपके प्राण के ऊपर चमकने न लगे और आपके पास प्रतिज्ञा होती है, वो इसे करेगा। आदम उसका एक भाग था, मेरा मतलब हवा आदम का भाग थी, वह उसके मांस में का मांस थी और उसकी हड्डी में की हड्डी थी। और यही है जो सही एकता है, और यही है जो कलीसिया की सही एकता है, उसकी आत्मा में की आत्मा, उसके वचनों में का वचन। वचन से कभी भी हटना नहीं। वास्तविक सच्चा विश्वासी किसी भी वचन पर समझौता नहीं करेगा। याद रखें, यह केवल एक वचन था जिस पर हवा ने समझौता किया, एक वचन। लेकिन सच्चा विश्वासी किसी भी वचन पर समझौता नहीं करेगा। यह विश्वास की तलवार को पकड़े रहेगा, मेरा मतलब विश्वास में वचन की तलवार, और परमेश्वर की हर एक दिव्य प्रतिज्ञा का दावा करेगा। ऐसा ही है, वे हमारे लिए परमेश्वर के उदाहरण थे। हमें क्या होना चाहिए? वे हमेशा ही उपस्थित थे, कभी भी असफल नहीं होते थे। जब उन्होंने बोला, परमेश्वर ने उत्तर दिया। वो उनकी प्रतिदिन निगरानी करता था। रात को जब वे सोने के लिए लेट जाते, उसने उन पर निगरानी रखी। दिन के समय में उसने उनका मार्गदर्शन किया, उन्हें खिलाया, उनसे प्रेम किया, उनके साथ निरंतर बातचीत की। हर समय वे परमेश्वर के स्वरूप में थे और परमेश्वर उनमें था। यही है जो एक संगति को बनाता है, यही है जो एकता को बनाता है। ये परमेश्वर अपनी कलीसिया में है, यही एकता है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, बताने के लिए बहुत से स्थान है। उसके साथ एक होना ये अनंत जीवन है, और केवल एक ही तरीके से हम उसके साथ एक हो सकते हैं कि हम उसके वचन के प्रत्येक छोटे अंश पर आ जाएं। ये सही है, हर एक प्रतिज्ञा को लें और इसका विश्वास करें। अब हवा उसके साथ एक थी जब तक कि उसने एक वचन को नहीं तोड़ा या एक वचन के सत्य होने पर संदेह किया। इसने हवा को अलग कर दिया। हर एक वचन, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन से जीवित रहेगा। इसलिए हम परमेश्वर में हो सकते हैं, एकता में, क्योंकि आदम और हवा गिरने से पहले, वचन पर अविश्वास करने से पहले, ये एक उदाहरण था कि हम उसमें क्या हो सकते हैं। उसके साथ एक होना यही जीवन है, उससे अलग हो जाना मृत्यु है। अब यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम जानते हैं कि हम गलतियां करते हैं, लेकिन आपको उसकी ओर नहीं देखना चाहिए। ये आपकी गलतियां नहीं है, क्योंकि आप हमेशा ही उन्हें करेंगे। लेकिन ध्यान दें, यह उसके नियमों का पालन करना है जो उसने करने के लिए कहा है, उसका पालन करना है। ठोकर खाना और गिरना, इसका इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। एक वास्तविक सच्चा सेवक, यदि वह ठोकर खाता है तो वह फिर से उठकर खड़ा होगा। यदि वह डगमगाता है तो परमेश्वर उसे मार्ग में सीधा वापस खींच लेता है, जब तक वो कर्तव्य के मार्ग में होता है। लेकिन यदि वह अपने कर्तव्य के मार्ग से हट जाता है तो परमेश्वर उसके प्रति बाध्य नहीं है, लेकिन जब तक वह कर्तव्य के मार्ग पर होता है परमेश्वर उसके प्रति बाध्य है, जानते हुए कि वह तो बस एक पुरुष या एक महिला ही है। वो उस व्यक्ति के लिए बाध्य रहता है जब तक वे कर्तव्य के मार्ग में होते हैं। अब कलीसिया की विवाह हेतु अब मसीह से सगाई हो चुकी है। विवाह को अभी तक कभी भी संपन्न नहीं किया गया है, यह मेमने के विवाह के बोझ के समय पर होगा। इसलिए हम देखते हैं कि कलीसिया की अब सगाई हो चुकी है, जैसे एक पुरुष अपनी पत्नी से सगाई करता है। जब वे सगाई करते हैं तो पुरुष क्या करता है? वो बस सब तरह की चीजों को प्रदान करने लगता है, उसे उपहार भेजता है, उससे अच्छा महसूस करने को लगाता है। तो यही है जो मसीह अपनी कलीसिया के लिए कर रहा है। वो हमारे लिए आत्मा के दानों को भेज रहा है। आप भला तब कैसे सगाई कर सकते हैं जबकि आप इन दानों के होने का इनकार कर रहे हैं? ये वही प्रेम के टोकन हैं। ये कलीसिया के लिए परमेश्वर का टोकन है। यीशु ने ऐसा कहा, ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। अब इन बातों को मन में रखें। कलीसिया को अवश्य ही हर एक वचन, हर एक प्रतिज्ञा, हर एक बिंदु पर विश्वास करना ही है और इसे अपने लिए दावा करना है और इसमें अपने लिए प्रयोग करना है। यदि मेरी किसी लड़की से सगाई होती है और मैं एक अविवाहित पुरुष हूँ और मैं उसे कुछ तो भेजता हूँ, एक सगाई की अंगूठी को, और वो इसे नहीं पहनती है, तब ये दर्शाता है कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करती है। वो मेरी दुल्हन नहीं बनना चाहती है। और यदि मसीह अपनी कलीसिया के लिए उन दानों को भेजता है जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है और वे उन्हें अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं वे ऐसे नहीं हैं। तो वे मसीह की दुल्हन नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने किसी और प्रेमी को ग्रहण किया है और न ही मसीह को जो दूल्हा है। इसलिए सच्ची कलीसिया प्रतिज्ञा को पकड़े रहती है और सब कुछ मानती है और परमेश्वर के द्वारा भेजे गए उन दानों को स्वीकार करती है, तो ठीक है। अब पहली मनुष्य जाति ने स्वयं को परमेश्वर पर विश्वास करने की संगति से अलग कर दिया, उसके वचन पर अविश्वास करने के द्वारा और शैतान के झूठ को सुनते हुए। अब यही वो पहली चीज है जिसने इस अद्भुत एकता की संगति से अलग कर दिया। अब देखिए, आदम और हवा एक ऐसी स्थिति में थे कि कभी भी नहीं मरेंगे, ऐसी स्थिति में थे कि कभी ना तो बूढ़ा होना है, ना कभी बीमार होना है, ना कभी भी चिंता करना है। आप कहते हैं मैं सचमुच में यही चाहता हूँ कि मैं भी इस तरह से बन सकूँ। मुझे मेरे पास आपके लिए खबर है, आप उसी स्थिति में हैं। परमेश्वर इसे धरती की हर एक सृष्टि को उसी स्थिति में रखता है। समझौता क्या था? यदि तुम मेरे वचनों का पालन करोगे, यदि मेरा वचन, यदि तुम इसका पालन करोगे, उस पर विश्वास करोगे और उस पर कार्य करोगे। लेकिन पहली बार जब हवा ने अविश्वास किया, जो परमेश्वर ने कहा, एक वचन को उसमें से हटा दिया, इसने उस महान एकता के साथ संगति को तोड़ दिया। और जिस मिनट कलीसिया परमेश्वर के बाइबल के किसी एक वचन का अविश्वास करती है और इसे कहीं तो और स्थान पर रखती है, तब वे उस अद्भुत संगति को तोड़ देते हैं जो उन्हें दी गई थी और वे अलग हो जाते हैं। जैसे ही उसने ऐसा किया, मृत्यु उसके मरणहार अस्तित्व में आ गई, न केवल उसके मरणहार में लेकिन उसके आत्मिक अस्तित्व में भी। उसने परमेश्वर के साथ संबंध को तोड़ दिया जिस मिनट उसने अविश्वास किया। और कोई भी पुरुष विश्वास नहीं कर सकता, यहाँ है ये, ना ही कोई पुरुष ना कोई स्त्री शैतान के झूठ पर विश्वास नहीं कर सकता है जब तक कि वे परमेश्वर की सच्चाई का अविश्वास नहीं करते हैं। कोई भी शैतान के झूठ का विश्वास नहीं कर सकता है जब तक कि वे परमेश्वर की सच्चाई का अविश्वास नहीं करता है। तो आप देखते हैं, हवा, आदम आज सुबह हमें ये किस स्थान में रखते हैं? अब आइए गंभीरता से सोचें, क्योंकि इस मरणहार जीवन के समाप्त होने के बाद हम कभी भी इसके बाद सोचने में सक्षम नहीं होंगे। आप अभी सोच सकते हैं, आप इसके बाद चुनाव नहीं कर सकते। आपको अवश्य ही अभी चुनाव करना है, क्योंकि यह दिन चुनाव का दिन है, अपने चुनाव को करने का। अब वो एक वचन, ना ही बाइबल के सारे आदेश, सिर्फ एक वचन, उसने परमेश्वर से प्रश्न किया, क्योंकि यह उसके लिए उस प्रकाश में प्रस्तुत किया गया था कि उस वचन पर सवाल को उठाया गया था। परमेश्वर के वचन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उसका अर्थ बिल्कुल वही होता है जो उसने कहा, लेकिन उसने इस पर सवाल उठाया क्योंकि यह उसके सामने रखा गया था। ओह, निश्चय ही परमेश्वर का यह अर्थ नहीं था, लेकिन उसका यही अर्थ था। परमेश्वर के हर एक वचन का वही अर्थ होता है जो वो कहता है, और इसे किसी के निजी अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। यह बस इसी तरह से होता है जो उसने कहा है। तो ठीक है, कहते हैं, आप बाइबल के बारे में कैसे जानते हैं? मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे परमेश्वर ने इस बाइबल का निर्देशन किया है। वो अपने वचन पर नजर रखता है। वो जानता था कि नास्तिक और विधर्मी लोग अंत के दिनों में उठ खड़े होंगे, इसलिए उसने इस पर नजर रखी है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से परमेश्वर का यही अर्थ है। अब हमारे साथ भी यह इसी तरह से है। अब हमें इसका विश्वास करना ही है। इसमें से एक वचन को निकालते हैं और हम अपनी संगति को खो देते हैं, मृत्यु में चले जाते हैं, परमेश्वर से अनंत अलगाव, ठीक जैसे आदम और हवा ने किया था। हमें परमेश्वर की सच्चाई पर विश्वास करना ही है। मुझे इसे फिर से दोहराने दें। परमेश्वर के बाइबल के किसी भी वचन पर अविश्वास ना करें, लेकिन ऐसे ही ना कहें, हाँ मैं इसे विश्वास करता हूँ। कहते हैं, लेकिन नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं है। आप इसे विश्वास करते हैं तो आप इसे स्वीकार करें। यदि आप इसे एक और रख देते हैं, कहते हैं तो ठीक है, मेरी कलीसिया इसे इस तरह से विश्वास नहीं करती है, तब आप विश्वास नहीं करते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है, और आप उसी दोष के नीचे चलकर जाओगे जिसके नीचे हवा चली गई थी। आपने अपने आप को अनंतता से अलग कर लिया जब आपके पास उसके साथ एक होने का मौका था। अब याद रखें, इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि यह एक वचन था जो परमेश्वर के वचन में था। और अब यदि परमेश्वर ने बस कुछ वचन दिए थे जिसका लोगों को पालन करना ही है, और उन कुछ वचनों में उनमें से एक वचन को गलत रूप से प्रस्तुत किया गया था जिसके कारण मृत्यु आ गई, उन वचनों की ओर देखें जो आज हमारे पास है, समझे? उनमें से हर एक वचन को हमें ग्रहण करना ही है, उन्हें थामे रखना है, और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के रूप में उसके अंदर प्रवेश करना है। और परमेश्वर की एक सच्ची पत्नी ऐसा ही करेगी, सच्ची मंगेतर, वो एक जो ग्रहण की गई। अब मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें अब वहाँ गहराई में जाएंगी, जिससे कि हम उन्हें पकड़ सकते हैं। वो पहली बात क्या थी जिसकी वजह से हव्वा ने परमेश्वर के वचन पर अविश्वास किया? यह इसलिए था क्योंकि शैतान ने उससे और अधिक बुद्धि का वादा किया था, तुम बुद्धिमान बन जाओगी। अब आप देखते हैं, मनुष्य जाति हमेशा ही कुछ तो चीज प्राप्त करने में लगी रहती है, और हव्वा अधिक बुद्धि प्राप्त करने में लगी हुई थी। अब आइए हम बस एक मिनट रुकें। क्या आज संसार की यही स्थिति नहीं है? वे अधिक बुद्धि को चाहते हैं, बेहतर वर्ग को, उच्च शिक्षा को चाहते हैं, कुछ तो ऐसा चाहते हैं जो अलग हो, अधिक बुद्धि। यही है जो हवा चाहती थी। लेकिन मुझे यह भी कहने दो कि कोई भी बुद्धि परमेश्वर से बढ़कर नहीं है, फिर भी यह इतने नम्र रूप में है कि लोग इससे चूक जाते हैं। शैतान, जैसा कि मैंने बहुत बार कहा है, वो जगमगाता है, लेकिन सुसमाचार चमकता है। ओह, वहाँ जगमगाने और चमकने में बहुत ही अंतर होता है। हॉलीवुड जगमगाता है, लेकिन कलीसिया परमेश्वर की सामर्थ और प्रेम के साथ चमकती है। हॉलीवुड जगमगाता है, जगमगाने और चमकने में बहुत अंतर है। हम जगमगाना नहीं चाहते हैं, हम चमकना चाहते हैं। आज ऐसा सोचना ये बहुत ही बुरी बात है, लेकिन कलीसियाएं अपनी समझ का सहारा लेने की कोशिश करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा ने किया। उसने सोचा क्योंकि इसे उसके सामने रखा गया था, यह बहुत ही वास्तविक दिखाई दिया। ओह, इसे समझने से चूकना मत, यह बहुत ही वास्तविक दिखाई दिया। कुछ तो जो परमेश्वर ने कहा उसमें जोड़ा जा सकता था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके पास कुछ तो ऐसा था जिसके बारे में परमेश्वर ने उसे यह नहीं बताया था कि वो कितनी दूर तक जा सकती है। परमेश्वर ने उसे सीमा रेखा को नहीं दिया था जैसे उसने समुद्र के लिए निर्धारित की है, और ये इसके पार नहीं जा सकता क्योंकि चंद्रमा इस पर नजर रखता है। उसने सोचा, हवा ने सोचा कि शैतान के पास कुछ तो खास है, जैसा कि हम कहते हैं कि वो अब भी परमेश्वर के साथ एकता में रहकर भी और भी चतुर हो सकती थी, उसे एक बेहतर शिक्षा मिल सकती थी। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए ठीक उतना ही निर्धारित किया था जितनी उसे आवश्यकता थी, और उसने कलीसिया के लिए उसी चीज को निर्धारित किया है। यह एक धर्म विद्यालय का तोड़ मरोड़ नहीं है, या न ही किसी बाइबल स्कूल से आई हुई और न ही अर्थ फेरी हुई शिक्षा है, लेकिन यह बिल्कुल वैसा ही है जो लिखा हुआ है। और यहोवा यो कहता है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन कलीसियाएं अपनी समझ का सहारा लेती हैं। वे सोचते हैं कि हो सकता है यह एक वहां उनके लिए कुछ तो तैयार किया गया है, और यह उन्हें भरमा रहा है। मुझे बस यहाँ एक मिनट के लिए रुकना है। सारा संसार इसी पर आधारित है। इस राष्ट्र की सारी अर्थव्यवस्था ये झूठी धारणा पर आधारित है। आपको अपने ऊपर एक छोटी सी मजाक सुनाता हूँ। यह कोई मजाक नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि हम सभी अपनी पत्नियों से प्रेम करते हैं, यह हमें करना चाहिए। और मैं यहाँ कुछ समय पहले पश्चिम में एक कार्यक्रम को देख रहा था, बहुत समय पहले की बात है, लगभग 3 वर्ष पहले। और अपने कमरे में एक सुबह को मैं उठा और वहाँ कमरे में एक टेलीविजन लगा हुआ था, और मैंने सोचा ऐसा दिखता है मौसम खराब है, और मैंने सोचा तो ठीक है 8 बजे तक उनके पास इसका समाचार होना चाहिए। और मेरे पास छोटी सी पुस्तिका थी, उसमें लिखा हुआ था इतने इतने समय पर टीवी पर समाचार आएगा। मैंने समाचार को चालू किया, और जब मैं समाचार को सुन रहा था तब मैंने ध्यान दिया कि समाचार प्रसारण के बीच में ही उन्होंने किसी प्रकार की वस्तु का विज्ञापन देना आरंभ किया, किसी प्रकार के बर्तन धोने के पाउडर के विषय में, और कहा अब आप महिलाओं को अपने बर्तन धोने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक चीज जो आपको करना है कि इस पाउडर को सीधा पानी में डाल दें और बर्तन कुछ मिनटों के लिए ऐसे ही उसमें छोड़ दें, इसे बाहर निकालें और इसे सूखे बोर्ड पर रख दें, यह साफ हो जाएंगे। मैंने सोचा जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं एक हीरो बन जाऊंगा। मैंने इस पाउडर का नाम लिख लिया, यह जो ऐसी ऐसी चीज है। मैंने कहा मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा, देखो मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए मैंने जाकर और इस फलाना और फलाना चीज की एक बोतल ले आया और मैंने इसे पानी में डाला। पत्नी से कहा कि घर में झाड़ू लगाना जारी रखे, मैं उसके लिए बर्तन को साफ कर दूंगा। तो मैंने बच्चों की प्लेट ली और बचे हुए टुकड़ों और आदि को बाहर निकाला और उस पर अंडा चिपका हुआ था और इसे पानी में डाल दिया और इसे कुछ मिनटों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया और बर्तन को बाहर निकालकर और उन्हें वहाँ पर रख दिया। जितना अंडा उन पर लगा हुआ था जब मैंने उन्हें वहाँ डाला था उतना ही अब भी था। देखो मैंने खो दिया। उस समय तक मेरी पत्नी ने मुझ पर से विश्वास खो दिया होता। आप देखिए राष्ट्र ऐसा क्यों करता है, ये क्यों, यह राष्ट्र लोगों को क्यों भरमाने को देता है। इसे इस तरह की बातें कहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इसे तो कानून के विरुद्ध करना चाहिए। आज के आधुनिक सिगरेट के विज्ञापन के विषय में देखो, क्या ही शर्मनाक बात है, एक गाड़ी भर के पी लो, खांसी नहीं, सारी अनेक बातें। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं, ये भरमा रहे हैं, उनमें से हर एक में मृत्यु छिपी है। वहाँ विस्की को पीने में मृत्यु छिपी है, बलात्कार, हत्या, पागलपन उस बोतल में है, लेकिन फिर भी हमें इसे हमारे कार्यक्रमों के बीच में डालने की अनुमति देते हैं, और उसका विज्ञापन करने देते हैं, जैसे कि उस प्रकार की शराब जो दादाजी पीते थे, जीवन में अधिक आनंद के लिए विभिन्न प्रकार के बियर और मदिरा के लिए अनुमति देते हैं। यह क्या है? ये भरमा रहे हैं, ये लोगों के सामने कुछ तो रख रहे हैं जिसके द्वारा वे खुद को मार डालें, और हमें ऐसा करने की अनुमति देते हैं। और अब मैं इसे फिर से उसी बात पर ले जाना चाहता हूँ, और कलीसियाएं मनुष्य के बनाए हुए मत सिद्धांतों में से होते हुए मृत्यु के बनाए हुए संप्रदाय लोगों के सामने एक बड़ा दिखावा पेश कर रहे हैं, और वे इसके लिए गिर रहे हैं जो कि मृत्यु है। कोई भी कलीसिया आपके प्राण को साफ नहीं करेगी, कोई संप्रदाय आपके प्राण को साफ नहीं कर सकता, केवल यीशु मसीह का लहू ही आपके प्राण को साफ कर सकता है। परमेश्वर का उपचार यह प्रमाणित हो चुका है, इसलिए यह बस झूठ है। लेकिन लोग बुद्धिमानों की समझ पर निर्भर रहते हैं और वे उसी से मर जाते हैं। और आज लोग मत सिद्धांत और संप्रदायों की समझ का सहारा ले रहे हैं, और लाखों वध किए गए सूअरों के समान नरक के अथाह गड्ढे में अपने रास्ते को बना रहे हैं। यह क्या ही शर्म की बात है, हमें हमारी अपनी समझ का सहारा लेने के लिए मना किया गया है, हम कोशिश भी नहीं कर सकते। आप कहते हैं क्या मनुष्य का परिषद इसके विषय में कहने के लिए एक व्यक्ति से अधिक नहीं जानता होगा? ना ही एक ऐसा व्यक्ति, यदि वो परमेश्वर के वचन को बोलता है। एक बार 400 भविष्यवक्ता दो राजाओं के सामने आए, और उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया, लेकिन वहाँ पर एक था जो परमेश्वर के वचन के साथ बना रहा, और ये साबित हो गया कि वो सही था, मिकाया। यह इस पर निर्भर करता है कि क्या यह परमेश्वर का वचन है या नहीं। जो कुछ भी वचन के विरोध में गलत है, ये मृत्यु की ओर ले जाता है। कोई भी बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि से बढ़कर नहीं हो सकती। वो सारे बुद्धिमानों से सबसे बुद्धिमान है, वो सोता है। वह बुद्धि का एकमात्र स्तोत्र है। हर एक मनुष्य का शब्द मूर्खता और झूठ है, लेकिन परमेश्वर का वचन, यदि यह परमेश्वर के वचन के विपरीत है। अब यदि व्यक्ति परमेश्वर का वचन बोल रहा है, तो यह अब मनुष्य का शब्द नहीं है, यह परमेश्वर का वचन है। देखो, यह मनुष्य की समझ नहीं है। शैतान आपसे हर प्रकार की प्रतिज्ञाएं करेगा, लेकिन उसके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई उद्धार नहीं है। शैतान क्या है? जो कुछ भी वचन के विपरीत है। उसके पास उद्धार नहीं है, उसके पास उजियाला नहीं है, उसका राज्य अंधकार है, इसलिए उसका अंत मृत्यु है। अंधकार और मृत्यु शैतान का राज्य है। भाई ब्रैनम, इसे फिर से दोहराएं। शैतान का राज्य क्या है? कोई भी चीज जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है। अब यह काट छाट करता है, लेकिन यह काटने का समय है। देखा, वो डाली, पेड़, यदि यह फलों को लाने जा रहा है, तो उसे अवश्य ही काटा छाटा जाना है। यही समय है। कोई भी चीज परमेश्वर के विपरीत है, परमेश्वर के वचन के, तो ये परमेश्वर नहीं है। ये क्या है? पाप क्या है? धार्मिकता का बिगड़ा हुआ रूप। मृत्यु क्या है? जीवन का बिगड़ा हुआ रूप। शैतान का राज्य क्या है? कोई भी चीज जो वचन के स्थान को लेने की कोशिश कर रही है, कुछ भी, कोई भी शिक्षा, एक शब्द, केवल एक शब्द। आप हर एक अंश पर विश्वास कर सकते हैं। हवा ने इसके हर एक अंश पर विश्वास किया, उस एक वचन को छोड़। अविश्वास करने के लिए उसे केवल एक ही वचन की आवश्यकता थी। वो एक वचन ही है जिसे आपको अविश्वास करने की जरूरत है। अब आइए हम इसे देखें। दिव्य संगति में बने रहने का केवल एक ही तरीका है, जो उस वचन का पालन करने से था। परमेश्वर ने कहा, तू ऐसा करना, तू ऐसा नहीं करना, तू इसे करना और तू इसे कर सकता है और ये कर सकता है। लेकिन ऐसा मत करना। अब एक छोटी सी आज्ञा का उसने उल्लंघन किया और सारी चीज को आरंभ कर दिया। क्योंकि उसने ऐसा किया, इसने हर एक बच्चे को भूखा बनाया जो कभी संसार में जन्मा था। मृत्यु की हर एक पीड़ा, हर एक दुख, हर एक हृदय का दौरा, उसने इसे ठीक तभी किया। क्या ही भयानक बात है परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करना। हर एक व्यक्ति जो हर एक मृत्यु के दर्द से कराहता है, जो कभी हुआ था या कभी होगा, उसने इसे ठीक तब किया था। हर एक छोटा बिना विवाह से आया हुआ बालक, उसने इसे ठीक तब किया। हर एक बालक जो विवाह के बंधन से बाहर जन्मा, जो भी पाप कभी किया गया, उसका कारण वही बनी, क्योंकि उसने हर एक वचन को तो माना, पर यहाँ एक छोटे से स्थान में चूक गई। उसने तर्क किया, उसने इसे अनदेखा नहीं किया। वो इसे जानती थी, लेकिन उसने बस उसे कुछ तो बेहतर करने के लिए बहकाया गया था, क्योंकि उसे बेहतर वर्ग के लोगों की बेहतर बुद्धि का वादा किया गया था कि वो इसके बारे में अधिक जान जाएगी यदि वो इसे करती है। हमारे सेवक बेहतर पढ़े लिखे हैं, हमारे पास एक बेहतर वर्ग के लोग हैं। संसार में उन लोगों से अच्छा कोई वर्ग नहीं है जो परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। यही सबसे अच्छा वर्ग है, केवल यही वो वर्ग है जिसकी ओर परमेश्वर देखता है। बस कुछ देर के लिए, और हो सकता है परमेश्वर हमें इसके अंदर ले जाए। शैतान का राज्य मृत्यु को छोड़ कुछ वादा नहीं कर सकता है। उसके पास बस यही है, वह मृत्यु का लेखक है। वह झूठ की प्रतिज्ञा कर सकता है, क्योंकि वो झूठ का पिता है। वो आपको जीवन नहीं दे सकता, वो आपको स्वर्ग नहीं दे सकता। उसके पास आपको देने के लिए कोई स्वर्ग नहीं है। इस पर जरा सोचें, एक वचन ताकि शैतान के एक वादे या उसके यंत्रावली में से होते हुए परमेश्वर पर अविश्वास करें। एक वचन जो आपको पीड़ा में डाल देता है। इसी तरह इसकी शुरुआत हुई, और यदि परमेश्वर उसकी दया में, जैसे कि वो दयालु है, इस धरती पर नरक के ढेर को आने देता है और ये छोटे छोटे भूखे बच्चों का कारण बनता है। इसके कारण सभी प्रकार की पीड़ाएं और भूखे लोग और धरती पर मृत्यु आ गई। ये आरंभ में एक वचन की वजह से हुआ। क्या वह इसे अनदेखा करके इस सारे दुख और पीड़ा को रोक नहीं सकता था? क्या वह ऐसा नहीं कर सकता था? तब यदि उसने वहाँ एक वचन के लिए क्षमा नहीं किया, ये जानते हुए कि इससे ये परिणाम होगा, तो अब एक वचन को कैसे छोड़ेगा, जबकि वह व्यक्ति अकेला ही पीड़ित होने जा रहा है जो अविश्वास करता है? इस पर सोचें, यह एक अत्यंत गंभीर बात है। अब जब आदम और हवा ने शैतान के झूठ पर कान लगाया, परमेश्वर के पवित्र स्वरूप ने उन्हें छोड़ दिया, उनकी संगति परमेश्वर के साथ टूट गई। उनकी परमेश्वर के साथ एकत्व की संगति टूट गई थी उसी मिनट जब उन्होंने शैतान के झूठ को सुना, जिससे उनकी संगति टूट गई। और उसी मिनट जब आप शैतान के झूठ को सुनते हैं, तो यह आपकी संगति को तोड़ देगा। यही वो मिनट होता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो जाते हैं, जैसे वो बाहर हो गई। यह तब होता है जब आप परमेश्वर के वचन को वैसे ही लेने से चूक जाते हैं जैसा ये है। अब देखिए, मैं आपसे कुछ तो पूछना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि एक परमेश्वर है, और यदि परमेश्वर अपने वचन के साथ इतना सही है और इतना दृढ़ निश्चित है कि वो अपने वचन के द्वारा लोगों का न्याय करेगा, तो फिर उसे लोगों का न्याय करने के लिए कहीं न कहीं एक वचन को सुरक्षित रखना होगा। यह बाइबल ही वही है, आप इसे मत भूलना। यह बाइबल ही है जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों का न्याय करेगा, क्योंकि इसे प्रकाशित वाक्य 22 में कहा गया, वो जो इसमें से एक वचन को निकालेगा या इसमें एक शब्द भी जोड़ेगा। देखिए, बस ऐसे ना कहें, खैर मैं कलीसिया जाता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। क्यों? नरक का हर शैतान उस पर विश्वास करता है, उनमें से हर एक धार्मिक है, हर एक। लेकिन यह बस एक शब्द निकालने की आवश्यकता है जो ठीक वहीं पर संगति को तोड़ देता है। जंजीर उसकी सबसे कमजोर कड़ी से अधिक मजबूत नहीं होती है, और जहां परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करने में आपकी कमजोरी है, वहीं आप एक नई कड़ी लगाना चाहते हो जो बाकी सबके साथ मजबूत हो। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह बचाता है, तो आपको अवश्य ही उसमें एक कड़ी को डालना है जो विश्वास करता है कि वो चंगा करता है। यदि आप विश्वास करते हैं कि वो था तो आपको विश्वास करना ही है कि वो है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं कि वो था और सोच रहे हैं कि क्या वो है या नहीं, तो वो कड़ी टूट जाएगी, तब आप नष्ट हो जाते हैं। देखा मेरा क्या मतलब है? यह सख्त है, यह कड़क है, लेकिन ये सच्चाई है। आपको उस पर विश्वास करना ही है, हर एक वचन पर, हर एक चीज पर जो उसने कहा। अब आप कहते हैं तो ठीक है, अब भाई ब्रैनम इन संप्रदायों के बारे में क्या है? अच्छा, अब सुनना, यदि वे इस वचन के साथ हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि वे उस वचन का इनकार करते हैं तो ये सही नहीं है, यह फिर से शैतान है, समझे। इस फलाना फलाना कलीसिया के विषय में क्या है? मैं नहीं जानता कि उस कलीसिया के विषय में क्या है। केवल एक चीज जिसके विषय में मैं जानता हूँ वो है ये वचन। अब आप एक कलीसिया का कैसे विश्वास करेंगे जबकि वहाँ 900 और कुछ विभिन्न संप्रदाय हैं और हर एक यही कह रहा है हमारे संप्रदाय के पास पूरी तरह से सत्य है। अब आप कहाँ पर जाएंगे? आपको किसी न किसी चीज में तो विश्वास करना होगा। तो ठीक है, आप कहते हैं मेरा विश्वास मेथोडिस्ट में है, बैप्टिस्ट में, प्रेस्बिटेरियन में, लूथरन में, पेंटिकॉस्टल में, कैथोलिक में है, जो कुछ भी ये है, आपको उस संगठन में विश्वास है। और यदि यह वचन के विपरीत है तो आप उसी काम को कर रहे हैं जो हवा ने किया। बिल्कुल, आप भी वही काम को कर रहे हैं जो उसने किया। परमेश्वर के वचन को लेकर और इसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छे वर्ग के लोग जाते हैं, इनकी एक बड़ी इमारत है, वे सबसे चतुर लोग हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। शैतान हवा से ज्यादा चतुर था, वो तो नहीं, वो तो यहाँ तक तस्वीर में भी नहीं थी, लेकिन उसे चतुर नहीं होना चाहिए था, उसे आज्ञाकारी होना चाहिए था, हमें चतुर नहीं होना चाहिए। यीशु ने कहा कि इस संसार की संतान या इस संसार का राज्य बहुत अधिक चतुर है। उजाले की संतान की तुलना में अंधकार की संतान अधिक चतुर है। हमारी तुलना भेड़ से की गई है, वे भेड़ खुद की अगुवाई भी नहीं कर सकती, उनके पास एक चरवाहा होना चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चतुर बने, वो चाहता है कि हम उसकी समझ का सहारा लें। आमीन। बस जहां वो अगुवाई करके ले जाता है। आमीन। आप तस्वीर को देख रहे हैं, अपनी समझ का सहारा ना लें। नीति वचन 5:3, अपनी समझ का सहारा ना लेना, उसकी समझ का सहारा लें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना भी विपरीत दिखाई देता हो और यहाँ कितनी तेज चमकती हुई रोशनी दिखाई दे, इस पर ध्यान न दें, केवल उसकी समझ का सहारा लें, जो उसने कहा वो सत्य है। अब परमेश्वर और उसके बच्चों के बीच में संगति की एकता टूट गई थी, जिस मिनट उसने एक छोटे से अनुच्छेद पर, परमेश्वर के एक छोटे से वचन पर अविश्वास किया। हर कोई ये समझ रहा है, कहें आमीन, ना ही बाइबल। कहते हैं मैं बाइबल पर पूरा पूरा विश्वास नहीं करता, मैं इसका आधा विश्वास करता हूँ। हवा को इसके हर एक अंश पर विश्वास करना था। इतना ही नहीं, लेकिन पति और पत्नी के बीच की एकता टूट गई थी। मैं विश्वास नहीं करता कि कोई भी विवाह ऐसा हो सकता है जैसा ये होना चाहिए, कि पति और पत्नी और परमेश्वर के बीच एकता ना हो। यह सही है, वे संसार में बच्चों को जन्म देकर और उन्हें नाजायज बना देते हैं, उन्हें सिगरेट देते हैं, बिस्की देते हैं, उन्हें अपने सामने ताश खेलने देते हैं, उनके सामने शराब पीने देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अपने विवाह की प्रतिज्ञाओं के प्रति कितने भी वफादार हों, यह यौन संबंध से है, यह शारीरिक है, लेकिन वहाँ पर एक आत्मा है, वो एक पापी पिता और माँ की आत्मा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चों के प्रति कितने वफादार हैं, वहाँ गलत ही होगा। तो ठीक है, आप कहते हैं मैं ऐसे पुरुषों और महिलाओं को जानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को यह नहीं सिखाया और वे मसीही नहीं हैं, उन्हें मसीह की ओर अगुवाई न करना ही ये सबसे गलत बात है जो वे अन्य बातों के अतिरिक्त कर सकते थे, उन्हें मसीह की ओर अगुवाई न करना। देखो, तो इसके बिना आपके पास एक सही एकता नहीं हो सकती है, संगति टूटी हुई है। फिर जैसे ही आदम और हवा के बीच संगति टूट गई, जैसे ही उनकी संगति परमेश्वर और उनके बीच में टूट गई, तब एक दूसरे के बीच की उनकी संगति टूट गई। सुनना, जब भी कलीसिया अपनी संगति को तोड़ती है जिससे कि स्वयं को एक संगठन में डाल दे, तब विश्वासियों की संगति टूट जाती है। हमें एक हृदय, एक मन और एक चित होकर विश्वास करना है। वे पेंटिकॉस्ट के दिन उस एकता के स्थापित होने से पहले वे ऐसे ही थे, एक हृदय, एक मन और एक चित्त। और जब आप एक कलीसिया को एक संगठन में डाल देते हैं तो आप इसमें सभी प्रकार के मतभेद लेकर आते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ बच्चे वहाँ परमेश्वर में विश्वास करेंगे, वे उस चीज को थामे रहेंगे जो सही है, और बाकी लोग दूसरे रास्ते में चले जाएंगे। इसलिए आपके पास कोई संगति नहीं होती है। जी हाँ, क्या उसकी सोच बदल गई? ओह हाँ, उसकी सोच बदल गई। अपने पति के साथ उसकी संगति सही नहीं थी, वे एक दूसरे पर दोष डालने लगे। देखा, उसकी सोच असल में बदल गई थी। क्यों? उसके अंदर शैतान का जीवन था। बिल्कुल, जैसे ही उसने परमेश्वर के वचन पर अविश्वास किया, उसने शैतान का जीवन स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसने उसकी शिक्षा को स्वीकार किया। मैं यहाँ इस बात को बहुत कठोरता से कह सकता हूँ, लेकिन ये टेप हो रहा है। मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे कलीसिया। उसने परमेश्वर के वचन पर अविश्वास किया और इसने उसे परमेश्वर से अलग कर दिया, क्योंकि ठीक तभी उसके अंदर शैतान का जीवन था। उसने उसके झूठ पर विश्वास किया था, कहा फल अच्छे हैं, और वो भी उसके साथ भागीदार हुई। यह सही है। मैं इस बात को रोक कर नहीं रखूंगा, मैं इसे किसी भी तरह से बोलूंगा, बस नहीं रोक सकता। एक दिन कैलिफोर्निया में, मेरा मतलब एरिजोना में, मैं एक कलीसिया में शिक्षा दे रहा था। मैंने कभी भी प्रेरणा में आकर ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिस बात को मुझे कभी वापस लेना पड़ा हो। बहुत से सेवक मेरे पीछे पड़ गए, शैतान के बीज के विषय को लेकर। सर्प का बीज, वो स्त्री, वो एक सेब को खा रही थी। ओह, जो कि खैर, केन ने उसी चीज को सोचकर उसने खेत के फलों को वहाँ लेकर आया। आप देखिए, ये कोई सेब नहीं था। उसे कैसे एहसास हुआ कि वो नग्न थी? हमने इन बातों को बताया है। यह असल में एक यौन संबंध था, निश्चय ही ऐसा था। उसे एहसास हुआ कि वो नग्न थी, और सर्प से उसका एक बालक हुआ था, जो कि एक सर्प नहीं था। वो सारे पशुओं में सबसे अधिक धूर्त पशु था। वो लगभग एक मनुष्य के समान ही था। मनुष्य बंदरों और चिंपांजी और इत्यादि की खोज कर सकता है, लेकिन वे उस कड़ी को नहीं पा सकते हैं जो मनुष्य और पशु को एक साथ जोड़ती है। वहाँ है वो। परमेश्वर ने उसे इतना शापित किया कि वो फिर से वापस नहीं आ सकता है। यह उसके किए हुए इस दुष्ट कार्य का परिणाम है। केवल वही वो बीज था जो मिश्रित हो सकता था। अब उस दिन मैं खड़े होकर प्रचार कर रहा था। मेरी सभा के लोगों में कैथोलिक लोगों का एक झुंड था, और मैंने कहा, आप कैथोलिक लोग जो यीशु को कहते हैं, या मेरा मतलब मरियम को परमेश्वर की माता कहते हैं, परमेश्वर की माता कैसे हो सकती है जबकि वह तो अनंत है? उसकी कोई माँ नहीं हो सकती। यीशु यहाँ तक मरियम का कोई नहीं था, लेकिन वह तो केवल एक साधन थी जिसके द्वारा वह संसार में आया। तो ठीक है, उन्होंने हमेशा ही विश्वास किया, और मुझे खुद भी वर्षों पहले इसका एक विचार आया था कि वो शुद्ध गर्भधारण था, जो कि परमेश्वर ने उस पर छाया की और वहाँ एक लहू की कोशिका डाल दी। लेकिन अंडा स्त्री से आता है। यदि अंडा स्त्री से आता है तो वहाँ एक उत्तेजना को आना होगा, ताकि अंडे को नली के जरिए से गर्भ में लाया जाए। देखा, आप परमेश्वर के साथ क्या करते हैं? आप एक यौन संबंध की गंदगी में उसे बनाते हैं। परमेश्वर जिसने लहू की कोशिका को बनाया, अंडे को भी बनाया। डॉक्टर, वहाँ नर और मादा दोनों के पराग कण को होना है। यह सही है। तो ठीक है, तब यदि इस स्त्री ने अंडे को उत्पन्न किया, तब दाऊद कैसे कह सकता है, मैं अपने पवित्र जन को संडे नहीं दूंगा, ना ही मैं उसके प्राण को अधोलोक में छोड़ूंगा? तब यदि स्त्री का अंडा मसीह में था, तब तो उस व्यक्ति का मसीह के पुनरुत्थान में उसका अपना कोई भाग होने के साथ कुछ लेना देना है, जबकि यह संपूर्ण रूप से परमेश्वर के साथ पूर्ण हो जाता है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति के लैंगिक भाग को उठाकर क्यों खड़ा किया पुनरुत्थान में? क्यों उसने उसकी देह को संडे के लिए नहीं छोड़ा? क्योंकि वो पवित्र था, और यदि उसका मरियम से गर्भ धारण होता तो वह भला पवित्र कैसे हो सकता था? और कैसे पराग कण मरियम से आया? अंडा उस नली के जरिए से गर्भ के अंदर चला गया। अंडे को वहाँ अंदर जाने के लिए कुछ संवेदना या अनुभूति होनी चाहिए, तब तो वो स्त्री होगी तो ठीक है। आप कहते हैं हो सकता है अंडा वहाँ पर पड़ा हुआ हो, ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन यह यदि ऐसा है तब देखो यहाँ क्या होता है। तब वो कुल मिलाकर परमेश्वर नहीं था, वो परमेश्वर नहीं था बल्कि वो मनुष्य था। लेकिन तब यदि ऐसा है तो उस स्त्री से जरूर कुछ तो था, और वो वास्तविक बीज जो मरियम से आया, जो उसकी माँ से आया और उसकी माँ से और उसकी माँ से, इसमें कुछ तो मानवीय मिश्रण था एक मनुष्य की इच्छा के साथ। ऐसा नहीं हो सकता था। नहीं श्रीमान, मैंने कहा वो केवल ठीक जैसे आप उकाब को लें और उसे एक अंडे को देने दें और फिर उसे मुर्गी के नीचे रख दें, मुर्गी अंडे को सेन कर बच्चे निकालेगी। वह केवल अंडे सेने की मशीन है, लेकिन इसमें उसका एक कण भी नहीं है। वो उकाब है, यह एक मुर्गी है। नहीं श्रीमान, वो मुर्गी आप एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को एक चिड़िया के अंडे के ऊपर बैठा सकते हैं और ये सेन कर चिड़िया को ही निकालेगा। छोटा सा कुत्ते का बच्चा ऐसे करेगा। यह तो शरीर की गर्मी होती है जिसने अंडे को सेन कर जन्म दिया। और इसी तरह से यही बात यीशु के साथ भी है। मरियम तो बस अंडे सेने की मशीन थी। परमेश्वर ने उसका उपयोग वैसे ही किया जैसे वो किसी अन्य महिला के साथ करता है। वो कुवारी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। वो एक कुवारी के गर्भ से आया, लेकिन परमेश्वर उस सृष्टिकर्ता ने अंडे और जीवाणु दोनों को बनाया, इसकी सृष्टि की, इसलिए यह बेदाग गर्भधारणा थी। जब मैं बाहर निकला, निश्चय ही आप जानते हैं कि भाई लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, भाई ब्रैनम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपने एक गलती की है, अब हमने आपकी गलती को पकड़ लिया है। मैंने कहा तो ठीक है, यही है जो मैं चाहता हूँ कि गलती को पकड़ा जाए। और कहा, आपने ये कहकर गलती की है जब आपने सर्प के बीज पर प्रचार किया, अब आप कहते हैं कि वो जो अंडा था, परमेश्वर ने उस अंडे की सृष्टि की। क्या हुआ? हम यहाँ देखते हैं उस उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में परमेश्वर ने मरियम से कहा, मैं तेरे बीज और सर्प के बीज के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मैंने सोचा, ओह प्रभु, मैंने अपने जीवन में कभी भी प्रेरणा के नीचे ऐसा कुछ भी प्रचार नहीं किया जिसे मुझे वापस लेना पड़ा हो, क्योंकि मैं अपनी खुद की समझ पर निर्भर नहीं रहता हूँ। और यदि मेरी समझ परमेश्वर के वचन के विपरीत है तो मेरी समझ गलत है। इसे परमेश्वर का वचन होना है। यदि ऐसा नहीं है तो इसे छोड़ दें, यह सही नहीं है। लेकिन अब इसे गलत ठहराना ही उचित है। मेरे हृदय में मैंने कहा, स्वर्गीय पिता, आप मेरी सहायता करें, मैं नहीं जानता कि यहाँ क्या करूँ। मनुष्य के पास वचन है जिस पर वो अपनी उंगली उठा रहा है, मैं तेरे बीज और सर्प के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। अब यहाँ है ये पवित्र आत्मा, वहाँ पर आ गया। मैं उसी एक पर विश्वास करता हूँ जो मरियम पर छाया कर सकता है, जो सृष्टि कर सकता है, वही आपके मुंह में भी एक वचन को डाल सकता है। मैं प्रतिदिन उस पर निर्भर रहता हूँ और यह हमेशा ही उसका वचन होता है। वो नहीं कह सकता, वो कुछ तो उसके वचन के विपरीत नहीं कह सकता। फिर यदि आप कहते हैं कि आप अभिषिक्त हैं और परमेश्वर के सत्य के विरोध में प्रचार करते हो, तब ये पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आप पर छाया करता है तो वो उसी चीज को लाता है, क्योंकि यह वचन है। सुनना क्या हुआ। मैंने कहा तो ठीक है, मैं आपसे कुछ तो पूछना चाहता हूँ। स्त्री के पास कोई अंडा नहीं है, उसके पास कोई बीज नहीं है। अब उसने कहा, ना ही एक अंडा, उसने कहा तेरा बीज, और उसके पास कोई बीज नहीं था। बीज को बनाने के लिए एक मिलन की आवश्यकता होती है। क्या यह सही है डॉक्टर? होना ही है। यदि आपके पास यहाँ बहुत सारा गूदा है, उसमें कोई भी जीवन नहीं है, और आप उसे यहाँ पर बोते हैं, यह कभी भी नहीं उगेगा, यह वहीं पड़ा पड़ा सर जाएगा, और आप गूदे के बिना जीवन को भी नहीं बो सकते। तो आप देखते हैं सारी चीज एक मिलन की है। अब मैं आपको मसीह और कलीसिया के विषय में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यह एक मिलन है। देखो, यदि स्त्री स्वयं ही बीज होती तो उसे पुरुष की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने बालक को स्वयं से ही उत्पन्न कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। उसके पास बालक नहीं हो सकता है जब तक वो पुरुष के साथ एक न हुई हो, क्योंकि एक बीज को बनाने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। क्या यह सही है? एक ऐसे बीज को बोएं जिसमें कोई जीवन न हो, तब देखो क्या होगा। जैसे वे यहाँ यह कहते हैं कि कोई स्त्री इन कुत्तों को जन्म दे रही है, देखो यह जीवित नहीं रह सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो पराग कण मिश्रित नहीं हो सकते। अब अब इस पर ध्यान दें, वह स्त्री एक बीज नहीं थी, इसलिए उसने कहा मैं तेरे बीज और सर्प के बीज के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। उसे बता रहा था कि वो जा रहा था स्वयं ताकि उसे एक बीज को दे, ना कि शारीरिक संबंध के जरिए से। वो उसमें एक बीज को सृष्टि करने जा रहा था। तो ठीक है, आप कहते हैं क्या वो उसका बीज होगा? जी हाँ, जब वो इसे मरियम को देगा तो यह उसी का होगा। यह मेरी आँख है, उसने मुझे इसे दिया है। यह मेरी आँख है लेकिन उसने मुझे इसे दिया है। यह मेरा हाथ है, उसने इसे मुझे दिया है। यह मेरी आवाज है लेकिन उसने मुझे इसे दिया है। समझे? और वो बीज जो था मरियम, इसका मरियम से कोई लेना देना नहीं था। यह कुछ तो था जिसे स्वयं परमेश्वर ने दिया था। इसलिए वो बीज जो तब हवा के अंदर था, जो एक अवैध क्रिया का एक मिलन था, जो कि मृत्यु थी, वो पहले से ही सर्प के बीज से गर्भवती थी, क्योंकि वह उसके साथ रही थी। और वो मुड़ी और उसने स्वयं ही कहा, सर्प ने मुझे बहकाया, यह सही है। और तुरंत ही केन आ गया। ओ, हम जानते हैं कि उसने कहा था कि उसने परमेश्वर से एक बालक पाया है। निश्चय ही हर एक बालक जो जन्म लेता है, अवैध या जो कुछ भी और है, इसे परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा ही आना होता है। केवल वही वो एक है जो जीवन को बना सकता है। निश्चित रूप से यह सही है। देखो, वो पहले से ही माँ बनने वाली थी और वो कभी नहीं, केवल इसने जो किया, सर्प के बीज की बात को स्पष्ट कर दिया। वो बीज जो अब तुम में है, यह गर्भधारणा के द्वारा है। तुमने मेरे वचन के विरुद्ध अवैध क्रिया की है यहाँ इस चीज के साथ, और अब तुम सर्प के बीज को ले चुकी हो। लेकिन मैं तुम्हें बेदाग गर्भधारणा के द्वारा एक बीज दूंगा, और उसका बीज सर्प के सिर को कुचलेगा और उसका सिर उसकी एड़ी को ढसेगा। आमीन। बस परमेश्वर को ऐसा करने दो। यदि यह उसका वचन है, वो इसे पूरा करेगा। यही कारण है कि आपको परमेश्वर के साथ एक होना होगा। यही वो कारण है कि पतरस ने पेंटिकॉस्ट के दिन कहा, यीशु के ऐसा कहने के बाद उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। पतरस ने पीछे पलटकर और कहा, उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दो, क्योंकि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। इसे समझे, इसके लिए एक एकता की आवश्यकता है। पौलुस ने कभी पतरस को नहीं देखा था, लेकिन वही पवित्र आत्मा उसी एकता में महिमा हो उसे उसी बात को कहने की प्रेरणा दी। क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया जब से तुमने विश्वास किया? उसने कहा, हमें तो यह भी पता नहीं कि ऐसा कुछ है। कहा, तुम्हारा बपतिस्मा कैसे हुआ था? कहा, यूहन्ना के निमित्त। कहा, तुम्हें यीशु मसीह के नाम में फिर से बपतिस्मा लेना होगा। और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। यह क्या था? एकता उसी बात को कह रहा है जो परमेश्वर कहता है, और यही अंगीकार करना है। अंगीकार का अर्थ होता है उसी बात को कहना, और वो हमारे अंगीकार करने का महायाजक है कि जो उसने कहा है उस पर कार्य करें। हम कहते हैं कि ये सच्चाई है और वो इस पर कार्य करता है। ओह प्रभु, वहाँ आप हैं, वहाँ वो गर्भधारणा है। अब देखो कि कैसे उसके और उसके पति के बीच की एकता टूट गई थी। देखो, जल्दी से जैसे ही परमेश्वर ने कहा, आदम तुमने ये कैसे किया, अपनी पत्नी का पक्ष लेने के बजाय उसने दोष अपनी पत्नी पर डाल दिया। वो स्त्री जो आपने मुझे दी थी, एकता टूट गई। समझे? हवा ने क्या किया? अपने पति से प्रेम करने और सच बोलने की बजाय उसने झूठ बोला। उसे कहना चाहिए था, उसका पति निर्दोष है, उसे मैंने दिया। आमीन। बाइबल ने कहा उसने अपने पति को दिया। उसे कहना चाहिए था, वो पुरुष निर्दोष है, मैंने उसे दिया और फिर उसने भी खाया। लेकिन मैं ही वो एक हूँ जिसने इसे उसे दिया था, बजाय इसके उसने दोष को सर्प पर डाल दिया, जो सबसे निकट का माध्यम था। यही वो चीज है वे आज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, पति पत्नी की एकता टूट गई। पति और पत्नी, उनके बीच संगति टूट गई थी, उनका एकत्व टूट गया था, उनके और परमेश्वर के बीच का एकत्व टूट गया था। सारी चीज बिगड़ गई थी। क्यों? क्योंकि एक वचन पर अविश्वास किया गया था। ओ भाई, प्रभु जी हाँ, उसे सच को बताना चाहिए था। उसके और उसके पति के बीच का एकत्व खत्म हो चुका था और उनका और परमेश्वर का एकत्व खत्म हो चुका था। और हर कलीसिया जो परमेश्वर के संपूर्ण वचन को नहीं लेती है, वहाँ पर वही चीज घटित होती है। मैं इसे पसंद करता हूँ, क्या आप नहीं करते? उसके पहले लोटे पर ध्यान दें। केन एक हत्यारा, एक झूठा, एक धोखेबाज, ईर्ष्यालु, अपने भाई से ईर्ष्या करने वाला। उसके भाई ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और परमेश्वर ने एक बलिदान को घात करके उनके लिए प्रायश्चित को ठहराया था। अब शैतान की अज्ञानता को देखिए, उसने किसी चीज से इसे बदलने की कोशिश की। परमेश्वर, बाइबल कहती है, उसने जाकर उन खाल से ढाकने के वस्त्रों को बनाया। खाल को पाने के लिए किसी चीज को मरना होता है। आदम ने अपने लिए अंजीर के पत्तों से कुछ ढाकने के लिए वस्त्र बनाने की कोशिश की। यह काम नहीं करेगा। ये वनस्पति जीवन है। जीवन चलते फिरते जीवन को मरना था, इसलिए एक निचले प्रकार के जीवन को मार डाला। और वहाँ पर बता रहा था कि किसी दिन मेरा अपना जीवन तुम्हारे लिए दिया जाएगा, वो सच्चा जीवन जो फिर से इस एकता में खींच कर लाएगा। अब परमेश्वर ने चाहा तो हम इसे कुछ ही मिनटों में ले लेंगे। देखो, यहाँ एक मेमने का जीवन है। अब तुम इसे अपने चारों ओर लपेट लो और अपने नग्नता को छिपा लो। तुम्हें सेब नहीं खाना चाहिए, ये बकवास है। देखा, इस खाल को अपने चारों ओर लपेट लो। उसे किसी को तो मारना था, और शैतान का पुत्र उस तरह से नहीं आया जिस तरह से वो चाहता था, पर वो आया। आप इसे जो भी कहना चाहें, लेकिन ये शैतान का पुत्र था, क्योंकि परमेश्वर के लिए आदम की पवित्रता इस प्रकार की चीज को नहीं ला सकती थी। ध्यान दें कि शैतान का पुत्र प्रायश्चित को बनाने का प्रयास कर रहा है। उसी चीज के साथ वापस आया जो आज अधिकांश लोग कहते हैं, एक सेब का ढेर और भूमि के फल, जिससे कि एक प्रायश्चित के लिए एक भेंट को चढ़ाएं, एक प्रतिकार। और धर्मी हाबिल ने क्या किया? वो जानता था कि ये ऐसी कोई चीज नहीं थी जैसे सेब को खाना। वह अपने माता और पिता का लहू था, उनका जीवन था, इसलिए उसने एक मेमने को लाया, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने किया। हालेलुया, उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया और केन उससे ईर्ष्या रखता था। आज भी वही बात है, उस लहू की बलि में आए वो परमेश्वर का वचन ठीक जैसा ये कहता है, ठीक इसके साथ बने रहे। उनमें से बहुत से लोग उस लहू की बलि का विश्वास करेंगे निश्चय ही, लेकिन वचन में कुछ तो और कहते हैं। वे कहते हैं, ओ नहीं, मैं इसका विश्वास नहीं करता, यह किसी और दिन के लिए है। वही पुराना शैतान, वही पुरानी चाल, रुके रहना जब तक हम इसमें से होकर नहीं जाते हैं। ध्यान दें, वह ठीक उसी तरह से नीचे आया, लेकिन केन ने उसकी मूर्खता के तरीकों से, ना ही इतनी मूर्खता लेकिन उसके चालाकी के तरीकों से भरमाया और फल को लेकर आया। आदम ने पालन, हाबिल ने परमेश्वर के वचन का पालन किया। वो एक मेमने को लाया। परमेश्वर ने कहा, यह सही है आदम, तुमने, मतलब हाबिल, तुमने मेरे वचन का पालन किया है। केन, तुम जानते थे कि यह सही नहीं है। क्या मैंने कोई अंजीर के पत्ते लिए थे जैसा तुम्हारे पिता ने करने का प्रयास किया? तुम्हारे पास एक अंजीर के फलों का ढेर है, या अंगूर, या सेब, या जो कुछ भी यहाँ तुम्हारे पास है। और अब तुम्हारे पिता ने पेड़ से पत्तियों को लिया ताकि प्रायश्चित को बनाने की कोशिश करे, और यहाँ तुम पेड़ पर से फल को तोड़ कर लाने की कोशिश कर रहे हो। यह वो नहीं था, यह तो जीवन का लहू था। ओ, परमेश्वर ने इसे नीचे लाया, कहा यहाँ है ये, और हाबिल ने सही भेंट को चढ़ाया। तब उसके भाई ने उससे ईर्ष्या की थी। देखो उसने क्या किया, उसने अपने भाई को मार डाला। परमेश्वर ने दूसरे एक को खड़ा किया, जैसे मृत्यु, गाड़ा जाना और मसीह का पुनरुत्थान। देखो, तब परमेश्वर उसने आदम और हवा को क्या बताया, आगे बढ़ो और फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, सारी पृथ्वी पर मनुष्य जाति को बिखेर दो, जिससे कि वो उनसे व्यक्तिगत रूप से व्यवहार कर सके, यहाँ तक कि वो उन्हें वापस एक साथ ला सके। वो लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप में प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है, लेकिन वे इसे इस तरह से नहीं चाहते थे। इस प्रकाशन से मत चूकना, परमेश्वर इसे होने दे, होने पाए आप इसे उसी तरह से देख सकें जिस तरह से मैं इसे देख रहा हूँ। देखो, यह ऐसा नहीं था। परमेश्वर किसी व्यक्ति के साथ एक झुंड में व्यवहार नहीं करता है। परमेश्वर आपके साथ एक संगठन में व्यवहार नहीं करता है। वह आपके साथ एक व्यक्तिगत रूप में व्यवहार करता है, एक व्यक्तिगत रूप से। हमने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया है, सामूहिक रूप से। जब हम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेते हैं तो हम शरीर में बपतिस्मा लेते हैं, व्यक्तिगत रूप से हरेक ने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया। परमेश्वर हरेक के साथ व्यवहार करता है, यही उसका उद्देश्य था, उन्हें सारी धरती पर फैला देना ताकि वह उनके साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहार कर सके। लेकिन बजाय इसके क्या हुआ, परमेश्वर को केन के लोगों को छेद के लोगों से अलग करना था, उसने केन को दूर भेज दिया, उसने उन्हें अलग किया जिससे कि वो उसकी कलीसिया के साथ व्यवहार कर सके। देखो, केन अलग किया गया था। अब ध्यान दें, परमेश्वर ने हवा के उस दुष्ट केन को आदम के उस पवित्र छेद से अलग किया। ओह, क्या उसने ऐसा किया? एक अवैध क्रिया के जरिए से यह स्त्री किसी और के साथ रहकर और एक बालक को जन्म दिया। परमेश्वर ने उस बालक को और उसकी पीढ़ियों को इस धर्मी और पवित्र मनुष्य और उसकी संतान से अलग कर दिया। आज भी यही बात है, अलग करते हुए, अलग किए गए, उन्हें पाया गया कि वे एकता में नहीं थे, उनके पास कोई एकता नहीं हो सकती थी। क्या रात की दिन के साथ एकता हो सकती है? क्या एक विश्वासी के साथ अविश्वासी की एकता हो सकती है? क्या एक मनुष्य जो परमेश्वर के सारे वचन में विश्वास करता है उनके साथ एक हो सकता है, जो केवल परमेश्वर के वचन के कुछ भाग का ही विश्वास करता है? परमेश्वर अलगाव को चाहता है। अब केन हवा का पुत्र था, उसने कहा मुझे एक पुत्र हुआ है, लेकिन शेत आदम का पुत्र था और परमेश्वर ने उन्हें अलग किया क्योंकि वो नहीं, क्यों? वे एक दूसरे को भ्रष्ट कर देंगे। केन की दुष्ट संतान शेत की अच्छी संतान को भ्रष्ट कर देगी, ये सही है। अब देखो, और वही पुराना शैतान जिसने हवा को परमेश्वर के एक वचन पर अविश्वास करने का कारण बना और उनसे कहा कि खुद को एक दूसरे से अलग करो और हर एक भिन्न तरीके से जिए, वही शैतान उनके बीच में आकर और उन्हें फिर से एक साथ देकर आया। क्या आप इसे समझ गए? कहें आमीन यदि आपने समझ लिया। उसने उन्हें फिर से एक साथ एक झूठी एकता के नीचे लाया। परमेश्वर का एक कार्य परमेश्वर की योजना के विरुद्ध कार्य था। क्या हुआ? उसने यह कैसे किया? परमेश्वर के पुत्रों ने, बाइबल ने कहा, उत्पत्ति में मनुष्य की पुत्रियों को देखा। परमेश्वर के पुत्र शेत के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, केन के बच्चों को। वे कितनी सुंदर थी, और उन्होंने क्या किया? वे उनके झांसे में आ गए और उन्होंने खुद को फिर से एक साथ एक कर लिया, सुंदरता के कारण कि वे दिखने में सुंदर थी। आज भी वही बात है भाइयों, यहाँ आप हैं, आप पेंटिकॉस्टल के कमजोर लोगों, वे जिन्हें परमेश्वर ने अलग किया और आपको एक अंतर संप्रदाय बनने के लिए बाहर भेजा। आप पेंटिकॉस्ट को संप्रदाय नहीं कर सकते, आपको उसके लोग बनने के लिए बाहर भेजा, लेकिन आपने बड़ी बड़ी अच्छी कलीसियाओं और धर्म ज्ञान को देखा, आपने अपने लिए बहुत से बड़े बड़े स्कूल और अन्य चीजें भी बना ली हैं, और आपने क्या किया? आपने परमेश्वर के लोगों को संगठन के साथ फिर से एक कर दिया है, जो कि इसकी बुनियाद वही कैथोलिकवाद है। सुंदर बड़ी बड़ी कलीसियाएं, अच्छे कपड़े पहने हुए लोग, इसमें शहर के मेयर और बाकी सभी लोग आते हैं, सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए, उत्तम शिक्षा पाए हुए, उच्च धर्मज्ञानी, जो जानता है कि कैसे एक ऐसे स्थान पर आना है जहां हर कोई बहुत ही शानदार कपड़े पहनता है, और पास्टर अपने स्थान पर बिल्कुल सही खड़ा रहता है। यह क्या है? आप उन चीजों की ओर देख रहे हैं जिन्हें परमेश्वर ने दोषी ठहराया है, और आपने पेंटिकॉस्टल कलीसिया को लिया है। परमेश्वर, इसे टेप तक पहुंचने दो और इसे एक संगठन के अंदर एक कर दिया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि यह एक हो जाएं, वो इसे अलग करना चाहता था, नहीं चाहता था संसार के साथ कभी एक हों। वही पुराना शैतान जिसने हवा को परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करने का कारण बना और उसके साथ बुरा किया, सीधे वहाँ वापस आकर और शेत के बच्चों को ले लिया और उन्हें केन की इन सुंदर स्त्रियों को दिखाया और वे फिर से एक हो गए। और वे अविश्वासी नहीं थे, वे साम्यवादी नहीं थे, नहीं नहीं, वे विश्वासी थे। उन्होंने कहा, अब शायद हो सकता है प्रभु कुछ तो करे, या ओह इसे इस तरह से करे। वे उन्होंने सोचा कि वे वही कर रहे हैं जो सही है, और परमेश्वर को क्या करना था? सारी चीजों को मिटाना था, उसे सारी चीजों को मिटा देना था। झूठी एकता के नीचे उसे बाढ़ को भेजना था और सारे झुंड को नष्ट करना था। उस झूठी एकता के लिए न्याय आ गया। एक झूठी एकता के कारण अदन पर न्याय उतरा। अब क्या सर्प के पास कोई बीज था? आप पर शर्म आती है। एक झूठी एकता ने धरती पर न्याय को लाया, अदन में हवा और आदम के लिए, और एक झूठी एकता ने धरती पर परमेश्वर के न्याय की बाढ़ को लाया, क्योंकि केन की पुत्रियों ने परमेश्वर के पुत्रों को अपने सौंदर्य से मोहित किया और वे इसके झांसे में आ गए और फिर से एक साथ एक हो गए। आप वहाँ हैं, झूठी एकता, कुछ भी नहीं हो सकता। परमेश्वर ने क्या किया? उसने सारी चीजों को नष्ट कर दिया, सिवाय अनमोल बूढ़े नूह और उसके परिवार के। वे एक साथ हो गए, और उसके बाद फिर से नूह की मृत्यु के बाद, और वह नूह का आत्मिक परिवार। पहली बात जो आप जानते हैं, मनुष्य की संतान फिर से एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, अब हम अविश्वासी नहीं हैं, हम सभी परमेश्वर में विश्वास करते हैं। इसलिए उनके पास एक व्यक्ति था, एक अगुआ, कोई महान आर्क बिशप जिसका नाम निम्रोद था, और उन्होंने एक मीनार को बनाया। वे अविश्वासी नहीं थे, उन्होंने विश्वास किया कि वहाँ एक स्वर्ग है, उन्होंने विश्वास किया कि वहाँ एक नरक है, वे न्याय में विश्वास करते थे। लेकिन परमेश्वर की संतान ने फिर से मनुष्य की पुत्रियों के साथ, और उन्होंने अपने आप में एक संबंध बना लिया झूठे तरीके से, और एक बहुत बड़ा गिरजाघर बनाया, एक बहुत बड़ा संगठन, और अन्य सभी स्थानों पर बाबुल के लिए थे। इसके लिए श्रद्धा अर्पित करना था, और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। तुम जानते हो कि हम चतुर हैं। उन्हें वह बुद्धि कहाँ से मिली? शैतान से। बिल्कुल ऐसा ही है, उन्हें यह शैतान से मिली थी, जैसे हवा को मिली, इसे शैतान से मिली। इसलिए उन्होंने कहा, हम अपने लिए एक संगठन बनाएंगे, हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, और मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। हमारे पास छोटी छोटी सीढ़ियाँ होंगी, हम दौड़कर ऊपर जाएंगे और गाएंगे और स्वर्ग दूतों के साथ आनंद करेंगे, और यहाँ वापस आकर और जिस तरह से हम जीना चाहते हैं वैसे ही जिएंगे। वो शैतान अभी भी जिंदा है, समझे? यह परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध था, उन्होंने उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। परमेश्वर ने क्या किया? ठीक है, उन्होंने बाबुल की एक मीनार को फिर से बनाया जो फिर से झूठ था, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उलझन में डाल दिया और उन्हें अलग कर दिया। परमेश्वर ने फिर से अलग किया और अपने भले बूढ़े धर्मी अब्राहम को भेजा, कहा, मैं तुम्हें लेकर और तुम में से एक राष्ट्र बनाऊंगा। परमेश्वर ने उन्हें अलग किया, अब्राहम उनके बीच में से निकला, सब कुछ पीछे छोड़ दे, और परमेश्वर ने उसे तब तक आशीषित नहीं किया जब तक कि उन्होंने हर एक चीज को पीछे नहीं छोड़ दिया। लूत अंतिम था, बाहर निकलो अब्राहम, उन अविश्वासियों से अलग हो जा, और मैं तुम्हें लेकर और तुम में से एक राष्ट्र बनाऊंगा। मैं ऐसी जाति को बनाऊंगा जो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, मैं उन्हें एक और मौका दूंगा। भला बूढ़ा अब्राहम एक अजनबी देश में परदेसी होकर रहने को चला गया, यही है जो हर एक अब्राहम करता है, एक अजनबी देश में परदेसी होकर रहता है। क्या एक ऐसी प्रतिज्ञा पर विश्वास करता है जो मानवीय दृष्टि में असंभव है? आपको क्या लगता है उन आधुनिक केन के डॉक्टरों ने उस दिन क्या कहा होगा? ओह, एक बूढ़ा मनुष्य जो 100 वर्ष की उम्र का है अपने 90 साल की पत्नी से एक बालक को प्राप्त करेगा? ओह, क्या ही हास्यास्पद बात है। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, और जो कुछ भी उसके विपरीत था उसे उसने ऐसे माना जैसे ये था ही नहीं। ये सारे झूठे बपतिस्मे, झूठी संवेदनाएं, झूठी चीजें जो आज चल रही हैं, मानो कि यह वहाँ नहीं है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और आगे चलते रहें। यह केवल एक ठोकर का कारण है जो आपको सच्ची चीज तक पहुँचने से रोके रखती है। यह सही है, आगे बढ़ो बच्चों, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। मैं परवाह नहीं करता कि शैतान कितनी भी वहाँ झूठी बातों को फैलाता है, परमेश्वर के पास अब भी एक सच्चा वचन है और वो इसे पूरा करता है। जो कुछ भी विपरीत था, अब्राहम ने उसे गलत कहा। रोमियो 4 अध्याय, यदि आप इसे लिख रहे हैं, अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध किसी भी बात को ऐसे कहा मानो कि यह थी ही नहीं, यह सही है। उसने परमेश्वर में विश्वास किया, वो मजबूत था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका शरीर कितना भी कमजोर हो गया हो, ये कितना ही असंभव लगता हो कि ऐसा घटित नहीं होगा, लेकिन अब्राहम इस बात पर विश्वास करता रहा। अब उसे नीचे वेदी पर जाकर और ऐसा नहीं कहना था, यदि यह ठीक अभी नहीं होता है तो मैं नहीं जानता कि इस पर विश्वास करना है या नहीं। अब्राहम इसके आने से पहले 25 वर्ष तक इसके साथ बना रहा, लेकिन यह वहाँ आ ही गया। यह हमेशा ही करता है। अब्राहम से इजाक आया, इजाक से याकूब आया, याकूब से कुलपिता आए, कुलपिताओं में से एक जाति मिस्र में गई और मिस्र में एक जाति बढ़ने लगी। फिर जब उसने अपने राष्ट्र को बढ़ाया, उसकी उपलब्धि को, तो उसने क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें फिर से अलग कर दिया। अविश्वासी और विश्वासी एक साथ नहीं चल सकते। नहीं श्रीमान, उसने उन्हें फिर से अलग किया अपने लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सही मार्गदर्शन में चलें। उसने उनके लिए क्या किया? अब ध्यान से सुनना, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हो सकता है 15 मिनट और। उसने उनकी अगुवाई की। देखो, उसने एक राष्ट्र को खड़ा किया, उन्हें शिक्षकों और चीजों के अधीनता में रखा। उन्हें पीटा जा रहा था और वे रो रहे थे और रोते जा रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, लेकिन परमेश्वर नीचे देख रहा था। उसे अब्राहम से की गई हर एक प्रतिज्ञा याद थी। एक दिन उसने सोचा, उसने उनके साथ क्या किया? जब उसने उन्हें अलग किया तो उसने क्या किया? उसने उन्हें एक नियम दिया और उसने उन्हें एक भविष्यवक्ता दिया, उसने उन्हें एक अग्नि का स्तंभ दिया। उसने क्या किया? हे परमेश्वर, उसने अपनी कलीसिया को व्यवस्थित किया, एक अग्नि का स्तंभ, आत्मा ताकि उनकी अगुवाई करे, एक भविष्यवक्ता जो उन्हें उसके वचन की सच्चाई को बताए। वे तब यात्रा के लिए तैयार थे। क्या यह अद्भुत नहीं है? वे जंगल के अंदर चले गए, चिन्ह और अद्भुत कार्य करते हुए, लाल समुन्द्र को खोलते हुए और फिरौन पर अधोलोक की विपत्तियां बरसाई। ओह प्रभु, एक अग्नि का स्तंभ उनके आगे आगे चलता रहा। आमीन। रात और दिन उनकी अगुवाई करता रहा। हालेलुया। एक भविष्यवक्ता उस वचन के प्रति सच्चा, वहाँ खड़े होकर उन्हें पंक्ति में बनाए रखता है। आमीन। वह तब अपने बच्चों को लेने के लिए तैयार था। ऐसा पहली बार था जब उन्हें कभी एक कलीसिया कहकर बुलाया गया था। यह एक नमूना था कि वो अंत के दिनों में क्या करने जा रहा है। हम बस एक मिनट में फिर से उस पर बात करेंगे। उसने उन्हें बाहर बुलाया, उन्हें एक व्यवस्था दी, उन्हें अपना वचन दिया और उन्हें एक भविष्यवक्ता दिया। उसने उन्हें एक चिन्ह दिया और उसने उन्हें जंगल के अंदर भेज दिया, उन्हें बाकी दुनिया से अलग कर दिया। उन्होंने क्या किया? मोआब की सुंदर स्त्रियों को देखा, देवी और देवताओं और हर चीजों से भरी एक गुनगुनी कलीसिया को देखा। उन्होंने क्या किया? वे उनके पास गए, उनकी स्त्रियों से विवाह कर लिया। ये सही है, बिल्कुल सही बात है। मैं कल्पना करता हूँ कि वे सुंदर छोटी मोआबी स्त्रियाँ वास्तव में सुंदर थी। मेरे पास घर पर एक भविष्यवाणी रखी हुई है, इन दिनों में से एक दिन मैं इसे पढ़ूंगा और आप सोचते हो कि मैं स्त्रियों पर उस प्रकार से क्यों कठोरता से बोलता हूँ। 30 साल पहले मेरे पास यहोवा यो कहता है वाला वचन था। 30 साल पहले जब मैंने सेवकाई में प्रवेश किया, उसने मुझे बताया कि अंत के दिनों में महिलाओं का झुकाव इतना अधिक अनैतिकता और भ्रष्टता की ओर चला जाएगा, वे धरती पर की सबसे दूषित चीज हो जाएंगी। सही है, उस स्त्री ने इसे आरंभ में शुरू किया और शैतान उस स्त्री का अंत में उपयोग कर रहा है। और देखो क्या हो रहा है, देखें कि पिछले कुछ सालों से होता आ रहा है। कहा था वह अपने वस्त्र को उतारना जारी रखेगी और कहा था वहाँ बस एक छोटा सा झुंड होगा, उसी चुने हुए लोगों का जो पहले से ठहराया हुआ है, उस चीज से बच निकलेगा। जब वो दर्शन आया, इसने मुझे चिंता में डाल दिया। मैंने सोचा स्त्रियाँ, मैं बाइबल में यशाया की ओर वापस गया। मैं सोचता हूँ 5वां अध्याय और इसमें कहा गया था, वो शाखा जो बच निकली है उस दिन पर सियोन की बेटियाँ यहोवा के लिए सुंदर होंगी। एक महिला ने एक दिन मुझे एक प्रश्न लिखा, उसने कहा भाई ब्रैनम, या नहीं, यह एक पुरुष था, सेवक था, हो सकता है वो आज सुबह यहाँ पर खड़ा हो, वो ओहियो का है। और उसने कहा हम वही बात कहना चाहते हैं जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन हमें आपके टेपों में कुछ ऐसा मिला जो सही नहीं है। सो बिली मेरे पास इस पत्र को लेकर आया, कहा आपके टेप पर कुछ तो बात है। कहता है भाई ब्रैनम, परमेश्वर के वचन के प्रति बहुत विरोधाभासी हैं और हम उसी बात को कहना चाहते हैं। कहा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वो है पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय और यह स्त्रियों के लिए सिर को ढाकने के विषय में कहता है और पुरुषों के लिए जिसे सिर को ढाकना नहीं है। कहा, हम ये विश्वास करते हैं स्त्रियों को कलीसिया में टोपी पहननी चाहिए और पुरुषों को कलीसिया में अपनी टोपी उतार देनी चाहिए। कहा, हम उन पर सिर ढाकने का विश्वास करते हैं और इत्यादि चीजें। और कहा, फिर दूसरा सवाल यह है कि लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु का दूत आपको हर बात को बताता है, हर एक वचन जो आप बोलते हैं वह प्रभु के दूत से आता है। और भाई ब्रैनम, इस प्रकार की किसी चीज के विरुद्ध लड़ना बहुत कठिन है। कहा, मेरी कलीसिया में, कहा, हम भी यही बात कहना चाहते हैं। अब भाई ब्रैनम, क्या आप विश्वास नहीं करते कि आप वहाँ थोड़ी सी गलती कर रहे हैं? मैंने वापस लिखा, मेरे बहुमूल्य भाई, मैं गलत नहीं हूँ। पहला कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में कहा गया है कि एक स्त्री को अपना सिर ढाकना चाहिए और क्यों? तब 15वें पद में कहा गया कि उसके लंबे बाल उसे ओढ़ने के लिए दिए गए हैं, ना ही एक टोपी। वो कैथोलिक आत्मा कलीसिया पर काफी समय से हावी है। उसके लंबे बाल उसके ढाकने के लिए होते हैं, ना ही स्वयं प्रकृति को। और देखो, और फिर सवाल वापस आता है, कुछ समय पहले किसी ने मुझसे पूछा था, जब मैं इस बात को ले रहा हूँ तो इसे समझा दूंगा। उसने कहा, तो ठीक है, बाइबल ने कहा कि दूतों के कारण उसे लंबे बाल रखने चाहिए, दूतों का एक स्त्री के साथ क्या संबंध है? मैंने कहा, एक दूत क्या होता है? यह एक संदेश वाहक है। पौलुस क्या कह रहा है? यदि एक सच्चा संदेश वाहक परमेश्वर का कोई एक दूत आता है तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप लंबे बाल रखें, वह इस बात को दोषी ठहराएगा। यह सही है। कितने लोगों के पास, कितने लोग जानते हैं कि एक दूत एक संदेश वाहक होता है? बिल्कुल सही, परमेश्वर द्वारा भेजा गया एक संदेश वाहक इसे दोषी ठहराएगा। कहा, दूतों के कारण तुम्हारे बाल लंबे होने चाहिए। जब परमेश्वर के भेजे हुए संदेश वाहक आते हैं तो वे उस बात को दोषी ठहराएंगे। हाँ, सचमुच, क्योंकि परमेश्वर की ओर से एक सच्चा संदेश वाहक, एक दूत परमेश्वर से जुड़ा हुआ होता है और उसका वचन असफल नहीं हो सकता। यह बिल्कुल सही है। संत पौलुस ने वहाँ कहा कि यदि स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी आकर कुछ और बताए तो वो शापित हो। यह सही है। अब हम पाते हैं कि यह सच है, उसके लंबे बाल होने चाहिए, यही उसकी ओढ़नी है। लेकिन मैं कल्पना करता हूँ कि ये सुंदर मुआबी स्त्रियाँ बहुत सुंदर थी। हो सकता है कि आज की कुछ आधुनिक इजाबेल की तरह उन्हें भी तैयार किया गया हो, लेकिन हालांकि ना ही सभी महिलाओं को। मैं सोचता हूँ कि एक सच्ची स्त्री एक रत्न होती है। एक सच्ची स्त्री के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। आप परमेश्वर की दासियां हैं, लेकिन एक सच्ची स्त्री एक सच्चे पुरुष की तरह है। वे परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, चाहे शैतान कुछ भी कहे या कोई भी झूठी बात। वे कहते हैं, हमारे पास्टर ने कहा कि ऐसा करना ठीक है। मैं परवाह नहीं करता कि आपके पास्टर ने क्या कहा। यदि ये परमेश्वर के वचन के विपरीत है तो उसके शब्द झूठे ठहरें और परमेश्वर के वचन में बने रहें। परवाह न करें कि यह कौन सा संप्रदाय है या वो क्या है। यदि उसे इस विषय में कुछ कहना है तो उसे बताएं कि परमेश्वर के वचन में देखें। बिल्कुल सही। ओह, हम किस तरह से आगे जाकर और परमेश्वर को उन्हें अलग करते हुए देख सकते हैं। हमें बस एक मिनट के लिए रुकना होगा। मेरे पास यहाँ कुछ वचन लिखे हुए हैं, मैं इसे छोड़ देना चाहता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी करके अंत तक पहुँच जाऊँ। फिर जब क्या हुआ, जब उसने वहाँ जगह ली, जब मोआबी स्त्रियाँ वहाँ थी, परमेश्वर को उन्हें फिर से अलग करना था, उसने क्या किया? तब यीशु आया। अब हम कहीं तो आ रहे हैं। तब यीशु आया, जो परमेश्वर का व्यक्त किया गया स्वरूप, स्त्री का बीज, स्वयं परमेश्वर के द्वारा गर्भित। उस महान वास्तुकार ने स्वयं एक देह का निर्माण किया। उसे किसी भी स्त्री या पुरुष से लकड़ी उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपने लिए एक घर बनाया। ओ प्रभु, मैं उस दिन इस्तफनुस के बारे में सोचता हूँ, जब उसने खड़े होकर कहा, तुम हृदय और कानों के खतना रहित लोगों, तुम हठीले हो, तुम हमेशा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादों ने किया वैसा ही तुम भी करते हो। कहा, सुलेमान ने उसके लिए एक भवन बनाया, लेकिन तो भी परम प्रधान हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, लेकिन तूने एक देह तैयार की है। कहीं से भी लकड़ियों को उधार नहीं लेना पड़ा। इब्रानियों 11वां अध्याय, मैं सोचता हूँ दूसरे या तीसरे पद में, ये कहता है कि संसार परमेश्वर के वचन के द्वारा रचा गया था। ये चीजें उन चीजों से बनी हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। परमेश्वर ने तब कहा, ऐसा होने दो, और ये वहाँ था, उसे वहाँ जाकर और ये कहने की जरूरत नहीं थी, श्रीमान चंद्रमा क्या आप मुझे एक थोड़ी सी लकड़ी उधार देंगे, श्रीमान तारे क्या आप मुझे कुछ कैल्शियम देंगे। परमेश्वर ऐसा नहीं करता, उसे ये कहने की जरूरत नहीं थी, मरियम तुम मुझे एक अंडा उधार दो, मैं एक देह बनाना चाहता हूँ ताकि मैं उसमें रह सकूँ। परमेश्वर सृष्टिकर्ता ने बोला और वह ठीक उसी समय एक माँ बन गई। वह एक माँ नहीं थी, वो बस एक स्त्री थी जो उसके बीज को जन्म दे रही थी। यह सही है, याद रखिए, वो यीशु की माँ नहीं थी, पर दुनिया ऐसा कहती है। मुझे वचन में एक भी जगह निकाल कर बताएं जहाँ उसने उसे माँ कहा हो। अब वापस वचन पर आते हैं, परमेश्वर की माता आप पर शर्म आती है। देखा, एक दिन वहाँ कुछ लोगों ने उससे कहा तुम्हारी माँ बाहर तुम्हें ढूंढ रही है। उसने कहा मेरी माँ कौन है? उसके चेलों की ओर देखकर कहा वे जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं वो मेरी माँ है। वो उसकी माँ नहीं थी, वो एक अंडे सेने की मशीन थी। परमेश्वर किसी और चीज का उपयोग कर सकता था, लेकिन वो सबसे निचली चीज को लेना चाहता था और दिखाना चाहता था कि वो उसके साथ क्या कर सकता है। इसे ऊपर उठाता है, जहाँ कुछ नहीं है उसमें से कुछ तो बनाता है। यही परमेश्वर है, व्यक्त किया गया स्वरूप सामने आया। यीशु वो जो एक बेदाग है, वो एक जो सबसे प्यारा सा, 10,000 में सबसे सुंदर है, घाटी की लिली, शारोन का गुलाब, ओह भोर का तारा, वो क्या था, वो किस लिए आया था? अब ध्यान से सुने ताकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच एकता को फिर से स्थापित करे। ओह क्या आप इसे समझ रहे हो भाई? उनकी बाबुल की सारी मीनारें और उनकी सारी दूसरी चीजें वहाँ पहले काम नहीं कर रही थी। उनके बगीचों के सारे फल और बाकी की हर एक चीज ने परमेश्वर को अप्रसन्न किया, इसलिए परमेश्वर नीचे उतर आया और स्वयं अपने द्वारा ही एक स्त्री के गर्भ में गर्भ धारण किया, अपने लिए एक देह बनाई और इमैनुएल बना। परमेश्वर हमारे साथ, न ही यहूदी और न ही अन्य जाति, लेकिन परमेश्वर वह यहूदी नहीं था, वो अन्य जाति नहीं था, वो परमेश्वर था। और अन्य जातियों का भी हर समय उसके लिए उतना ही महत्व था। केवल उसने एक यहूदी को एक राष्ट्र के लिए अलग करने की कोशिश की, उसने इसे वापस पाने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की, और इसे स्थापित करने का एकमात्र तरीका यह था कि वह फिर से एक व्यक्तिगत के पास वैसे ही लौटे जैसा वो आदि में था। आज एक व्यक्तिगत के लिए ये इसी प्रकार से है, ना ही किसी संप्रदाय के लिए, ना ही किसी संगठन के लिए, ना ही लोगों के झुंड के लिए, लेकिन एक व्यक्तिगत के लिए। ध्यान दें ताकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच एकता को फिर से स्थापित करे। वो एक सच्चा पाप बलि था, भेड़ बकरियां और इत्यादि कभी भी पाप को दूर नहीं कर सकते थे, लेकिन जीवन, क्योंकि जब बलिदान को घात किया जाता है और एक मेमने का जीवन जो सबसे निर्दोष चीज है वापस नहीं आ सकता, विश्वासी के ऊपर वो जीवन वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक मनुष्य था जिसके पास एक प्राण है और मेमने के पास कोई प्राण नहीं होता है। देखो, मनुष्य के अलावा किसी के पास प्राण नहीं होता है। परमेश्वर ने, वो एक जानवर का रूप है, ये सत्य है, लेकिन उसने उस पर एक प्राण को डाला। यही है जो उसे जानवरों से अलग बनाता है। जब उसका प्राण उस पर आता है, उसे सही और गलत का पता चल गया। लेकिन वह, याद रखें, जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और तब वो एक जीवित प्राण बन गया। देखो, वो ऐसा बन गया, सही और गलत को जानने लगा। अब ध्यान दें, लेकिन अब इसमें यीशु आया और वह परमेश्वर था। न केवल दूसरे मनुष्य का जीवन दूसरे मनुष्य पर आ सकता है, लेकिन उसी परमेश्वर का जीवन भी उसमें आकर उसे परमेश्वर की संतान बनाता है, उसे फिर से उसी एकता में वापस रख देता है जो वो गिरने से पहले था। अब हम सच्ची एकता में आ रहे हैं। लोग, कोई तो मुझसे कहता है, भाई ब्रैनम, क्या आपकी एकता नहीं है? ना ही संगठन की एकता, लेकिन मेरी एकता मसीह के साथ है। देखो, लेकिन संगठन की एकता नहीं, उसने पाप का कर्जा चुकाया। अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच एकता को लाने के लिए यीशु इसे तब तक नहीं कर सकता था जब तक वो यहाँ मांस के शरीर में था, इसलिए उसे संपूर्ण पाप बलि बनना था ताकि विश्वासियों के अपराध को दूर करे। देखो, इसे दूर करे ताकि पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर आ सके और मनुष्य और परमेश्वर को फिर से एकता में ला सके। देखो, वहाँ इसे फिर से स्थापित करने के लिए कुछ तो होना ही था। अब क्या फिर से स्थापित कर सकता है जब परमेश्वर की आज्ञा पूरी हो जाती है? क्या एक दूत इसे पूरा कर सकता है? उसके पास कोई लहू नहीं था। क्या परमेश्वर इसे पूरा कर सकता था? उसके पास कोई लहू नहीं था। और परमेश्वर मांस और लहू बन गया ताकि वह उस कर्ज को सही तरीके से चुका सके और पाप को दूर करे, क्योंकि केवल यही एक तरीका है। सारी धरती पर बाबुल की मीनारें उन्हें अलग करती है, बाकी की हर एक चीज, संगठन और चीजें हर तरह से विफल हो गई थी। वे आपस में मिश्रित हो जाते हैं, दुनिया और बाकी की हर एक चीज, लेकिन यह तो पूरी तरह से अलगाव होने वाला था। महिमा हो, अब मैं धार्मिक महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब अपना मूल पाठ लेकर और ठीक अभी से प्रचार करना आरंभ कर सकता हूँ। मैं अभी इस बात के लिए तैयार हो रहा हूँ कि मैं ठीक यहीं से आरंभ कर सकता हूँ और यह मेरे लिए रुकने का समय है। ओह, हो सकता है मैं इसे बाद में किसी समय समाप्त करूँगा। परमेश्वर और मनुष्य की एकता, क्या आप समझ गए? वे सब जो समझ गए आमीन कहें। देखो, यही एकमात्र तरीका है कि मनुष्य फिर से अपनी मूल अवस्था में वापस आ सकता है। पाप के उस दंड के लिए भुगतान किया जाना है। पाप का दंड क्या है? मृत्यु। पाप की मजदूरी मृत्यु है। और परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तुम इसे खाओगे, जिस दिन तुम ये संबंध करोगे, उसी दिन तुम मर जाओगे। और जब ऐसा हुआ, इसने उस रिश्ते को तोड़ दिया, मनुष्य के लिए संगति और हर एक चीज को, और जब तक भुगतान नहीं किया गया, फिर से वे वापस नहीं आ सकते थे, और कोई भी इसे चुकाने के योग्य नहीं था, क्योंकि हर कोई मनुष्य जाति के साथ गिर गया था, क्योंकि हर एक सृष्टि मनुष्य जाति की अधीनता में थी, और वो गिर गया था। महिमा हो। ओ भाई, भाई मैक, मैंने आपको वहाँ बैठे हुए नहीं देखा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम इस पर विश्वास करते हैं भाई मैक, मृत्यु के दंड के नीचे आ जाएं। जब मैं यहाँ से चला गया था तो भाई मैक यहाँ आराधनालय में पास्टर हुआ करते थे। जी हाँ, अब वहाँ एक और अच्छा पुराना बैप्टिस्ट, मिशनरी बैप्टिस्ट है, जिसके पास पवित्र आत्मा है। समझे? अब ध्यान दें, परमेश्वर के साथ एकता में आ जाएं। अब जब हम ये देखते हैं कि दंड अवश्य चुकाया जाना चाहिए, और ध्यान दें, जानवर जीवन का सर्वोच्च रूप एक मनुष्य है, और मनुष्य स्वयं में गिर गया था, तो भला कैसे एक मनुष्य दूसरे को बचा सकता है? इसके लिए परमेश्वर की जरूरत थी, और परमेश्वर आत्मा में मर नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर को अपने आप को दूतों से थोड़ा नीचे लाना था। इब्रानियों का पहला अध्याय पहला पद, मृत्यु को लेने के लिए अपने आप को दूतों से नीचे करना था, ताकि दंड का भुगतान करे, ताकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच फिर से एकता को लाए, ताकि पवित्र आत्मा फिर से आ सके। पाप का कर्ज चुकाया गया। यीशु को पवित्र आत्मा को वापस भेजने के लिए ऐसा करना था, ताकि लोगों को फिर से एकता में ला सके, जैसे कि यह अदन की वाटिका में था। यीशु की मृत्यु के बाद कर्ज चुकाया गया था, इससे मामला खत्म हो गया। आमीन भाई, काश मैं केवल इस बात को अंदर डाल सकता। देखो, कर्ज को चुकाया गया है, मेमने को हालेलुया, कर्ज को चुकाया गया है। और हर एक पुरुष और महिला आज सुबह मुझे सुन रहे हैं या टेप के द्वारा मुझे सुनेंगे, आपके दंड का भुगतान किया गया है। आप परमेश्वर के वचन पर फिर से अविश्वास ना करें, वचन की ओर लौट आएं। इसका विश्वास वो वचन था। महिमा, सच कहूं तो मुझे चिल्लाने का मन कर रहा है, दंड का भुगतान किया गया है, ये सब खत्म हो गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि दूत चिल्लाए और गाने लगे, स्वर्ग के स्तुति गीत गूंज उठे। जी हाँ श्रीमान, खोई हुई भीड़ मिल गई, उसके लिए प्रायश्चित की व्यवस्था की गई, ताकि फिर से वापस लौटाया जाए। अलगाव का जल, परमेश्वर का वचन, जो उसे उसके अधर्म से धोता है। जब वचन मेरे स्थान पर मर गया और फिर से पुनरुत्थित हो उठा, और मेरे जीवन में, मेरे हृदय में प्रधानता बन गया। आमीन। दंड का भुगतान किया गया, यह पूरा हुआ, हमें छुड़ाया गया है, न ही कैथोलिक कलीसिया के द्वारा, यद्यपि हम सही कैथोलिक हैं, प्रिनिटिक कैथोलिक, जी हाँ श्रीमान, न ही उनके अपने सिद्धांतों के साथ रोमन कैथोलिक, वे इस वचन को अपने सिद्धांत से इनकार करते हैं। हर एक चीज आपका सिद्धांत है, न ही वचन। मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट, आप पर शर्म आती है, आप परमेश्वर के प्रेम से अधिक अधर्मता के प्रेमी हो, सुख विलास के प्रेमी, संसार के चाहने वाले, भोग विलास करने वाले, ऐसे जैसे वध करने के लिए पाले गए सुअर। शैतान उसके साधनों को वहाँ भेजकर उन चीजों को आप में भरते जा रहा है, जैसा शैतान ने अदन की वाटिका में किया था। तो ठीक है, हमारे सभी सेवक लोग शिक्षित हैं, उन्होंने पीएचडी, एलएलडी की डिग्री हासिल की है, इसका कोई लेना देना नहीं है। उस वचन का इनकार करना, यह अब भी शैतान की चाल है। मैंने आज सुबह वचन के द्वारा इसे आपके लिए साबित किया है, अब से आगे यह आप पर निर्भर करता है। चेले यहाँ तक कि यीशु के साथ चल रहे थे, उनमें एकता नहीं थी, उनमें कोई एकता नहीं थी, नहीं, उन्होंने वाद विवाद किया, इसके बाद कौन बिशप बनेगा, हमारे बीच में सबसे बड़ा कौन है। वे यहाँ तक यीशु पर विश्वास भी नहीं कर सके, वे उसे समझ भी नहीं सके। तू पहेलियों में बोलता है, हमें स्पष्ट रूप से बता कि तेरा क्या मतलब है। यीशु और उसके चेलों के बीच, मतलब यीशु के चेलों और चेलों की एक दूसरे के साथ, उनके बीच कोई एकता नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये आपको दिखा देगा। अब ध्यान से सुने, मैं चाहता हूँ कि ये बात आपके हृदय की गहराई में स्थिर हो जाए। देखा, परमेश्वर के पास एक योजना है। उस योजना के बाहर मैं परवाह नहीं करता कि इसके पीछे कितनी बुद्धिमता है, कितने करोड़ों डॉलर की इमारतें हैं, कितने धर्म ज्ञान के स्कूल हैं, कितने पवित्र पुरुष हैं और पवित्र ये है और पवित्र 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 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि परमेश्वर की बाइबल के एक वचन को इनकार किया जाता है तो ये शैतान का है। अब मैंने आपको परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा साबित किया है, नए नियम से लेकर पुराने नियम तक, और मैं उसे उस दिन से लेकर यहाँ इस दिन में लाऊंगा, यदि आप मेरे साथ बस कुछ मिनटों तक बैठेंगे। वे चेले जो यीशु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, उसके साथ सोए, उसके साथ खाते थे, उसके आश्चर्य कर्मों को देखा और उसके साथ इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे जितना नजदीक कोई भाई हो सकता है, और फिर भी उनके पास ये नहीं था। वे सुसमाचार प्रचार करने के लिए उपयुक्त नहीं थे। यीशु ने कहा, अब तुम और प्रचार न करना, तुम यहाँ तक कोशिश भी मत करना, तुम वहाँ पर यरूशलेम नगर में रुके रहना। मैं प्रतिज्ञा को भेजने जा रहा हूँ जो तुम्हें दी गई है, तुम पर उतरेगी, तब यह तुम्हें एक कर देगा। अब पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे एक हों, जैसे आप और मैं एक हैं, और मैं जैसे मेरे पिता ने मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा है, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। और वही पिता जिसने पुत्र को भेजा, पुत्र में आया, एकता के रूप में एक। उसने कहा, यदि मैं अपने पिता के कामों को नहीं करता तो मेरा विश्वास मत करो, लेकिन यदि मेरे काम जो मैं करता हूँ वे ऊंची आवाज में बोलते हैं, यदि तुम इसे नहीं देखते हो तो तुम पूरी तरह से बहरे, गूंगे और अंधे हो। ओ भाई, कहा, हे कपटियों, तुम आकाश के दशा को देखकर पहचान सकते हो, लेकिन समय के चिन्हों को तुम नहीं पहचान सकते। यदि तुमने मुझे पहचाना होता तो तुमने मेरे दिन को भी पहचाना होता। यशायाह ने तुम्हारे बारे में बात की, तुम्हारे कान हैं और तुम इतने बहरे हो कि तुम सुन नहीं सकते, आंखें तो हैं और इतने अंधे हो कि तुम देख नहीं सकते। प्रेरित पौलुस ने ठीक कहा, अंतिम दिनों में वे भक्ति का भेष तो धरेंगे और उसकी शक्ति का इनकार करेंगे, और वचन के बाद वचन, अंतिम दिनों में इन संगठनों में क्या बात जगह लेगी। तब वे सोचते हैं कि मैं शैतान की उस मनुष्य की बनाई व्यवस्था के विरोध में क्यों चिल्ला रहा हूँ। उन बहुमूल्य बच्चों को देखें, जैसे भेड़ को बहकाकर वध करने के लिए ले जाया जा रहा है। प्रभु, उन्हें बाहर लाएं। जी हाँ, चेलों में कोई एकता नहीं थी, वे यीशु को नहीं समझ सके। उन्होंने कहा, आह, इन बातों को कौन समझ सकता है। देखो, परमेश्वर उनमें अभी तक नहीं था, वे बस संगति में जुड़े हुए थे, वे बस उसके साथ सहभागिता में थे। आज बहुत से अच्छे लोग ऐसे हैं, उन्होंने शराब नहीं पी, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उनके पास परमेश्वर की एकता नहीं है। वे अभी तक परमेश्वर के साथ एक नहीं हुए थे। देखिए, वे नहीं हो सकते थे। ओह, उन्होंने अद्भुत कार्य किए, उन्होंने शैतानों को बाहर निकाला, यह कुछ भी नहीं। मैंने एक दिन अखबार में इस विषय में एक लेख पढ़ा, शैतानों को बाहर निकालने के विषय में। लोग कहते हैं, ओ भाई, मैं तो आपको बता रहा हूँ, बस यही बात है। ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति जो शैतान को निकालता है और परमेश्वर के वचन का इनकार करता है, वो झूठा है। जी हाँ श्रीमान, वो कहता है कि वो शैतानों को बाहर निकालता है। वे दावा करते हैं कि वे ऐसा करते हैं। यदि वो परमेश्वर के वचन के साथ नहीं है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। यीशु ने ऐसा कहा। अब तब पेंटिकॉस्ट आया, परमेश्वर ने उन्हें फिर से एक कर दिया। ओह प्रभु, तब वे परमेश्वर के साथ एकता में आ गए, परमेश्वर उनमें था। अब प्रेरितों के काम, यदि आप इसे लिख रहे हैं, प्रेरितों के काम 4:32, बाइबल ने कहा कि वे एक हृदय, एक प्राण और एक मन के साथ थे। ओ भाई, क्यों? उन्हें फिर से मूल रूप से वापस लौटाया गया था। केवल एक चीज जो उन्होंने छोड़ दी थी, समाप्त होना था, जो कि एक पुराना शहर था, या वे जिसमें रहते थे, एक पुरानी देह जिसे नगर या मंदिर कहा जाता है, जिसमें वे यहाँ रहते थे, जिसे सड़ना था क्योंकि इसे मरना और नष्ट होना था, लेकिन आत्मा और जीवन में और उद्देश्य में और दर्शन में और हर एक चीज में वे परमेश्वर के साथ एक थे। ओ एडम, ओह आदम, मेरे उदास मित्र, शैतान को फिर से अपने झूठ को बताने नहीं देना, ऐसा होने ना देना। शैतान को तुम्हें यह मत कहने देना कि वचन का अर्थ ऐसा नहीं है जो वो कहता है, यह सही है। वचन का अर्थ, जी हाँ, यहाँ नहीं, मैं यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे पर बात कर रहा था, यह ठीक बात है, इसका एक प्रकाशन आता है, यही सत्य है। लेकिन लोगों के झुंड ने क्या किया, इसे ठीक यहीं इकट्ठा किया और इसमें से एक संप्रदाय को बनाया, बाबुल की एक और मीनार को खड़ा किया, वही बात इसे ठीक इसमें डाल दिया। निश्चित रूप से लूथर ने भी यही काम किया, वेस्ली ने वही काम किया, जॉन स्मिथ ने वही काम किया, एलेक्जेंडर कैंपबेल ने वही काम किया, पेंटिकॉस्टल ने भी वही काम किया। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करते हुए व्यक्तिगत के साथ व्यवहार करता है। विश्वासियों को एक सच्ची एकता में अपने पास लाने के लिए परमेश्वर की एकमात्र योजना पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है। तो फिर यहाँ है कैसे आप कहते हैं, तो ठीक है भाई ब्रैनम, मैंने अन्य जुबानों में बोला, मैंने चिल्लाया, मैंने ऐसा किया। यदि आप में अब भी उस प्रकार की आत्मा है और परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं, आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, आपके पास आत्मा नहीं है। यदि आप बैठकर और प्रचारित सत्य को सुनेंगे और इसे बाइबल में देखते हैं और देखते हैं कि यह सत्य है और फिर इसे करने से इनकार कर देते हो, तो यह परमेश्वर का आत्मा नहीं है। मैं परवाह नहीं करता कि आपने कितना अन्य जुबानों में बोला है, आप कितना चिल्लाए, आप कितनी कलीसियाओं से संबंध रखते हैं, या आपने कितनी बार बपतिस्मा लिया है, या ये कुछ भी और है। वचन सत्य है, यही है जो सत्य को प्रमाणित करता है। यदि आपको ये सभी अन्य सच्चाइयाँ मिल गई हैं और फिर वचन के साथ हैं, आमीन, तो आप जान जाते हैं कि आप घर आ रहे हैं। कैसे वही परमेश्वर जिसने बाइबल को लिखा है पलटकर और अपने वचन के स्थान पर कुछ तो और रख सकता है। आप कैथोलिक लोग जिन्होंने कहा कि पतरस को आपकी कलीसिया में दफनाया गया था और उसकी आत्मा आपको पापों और इत्यादि चीजों को क्षमा करने का अधिकार देती है, तो पतरस एक यहूदी भला कैसे कभी कलीसिया में मूर्तियों को बर्दाश्त कर सकता है? कैसे पतरस कभी यह कहने से इनकार कर सकता था कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आया है और उसने अन्य जुबान में बोला और वे सारे सामर्थ्य काम जो उसने किए, और पीछे मुड़कर और कहता है कि एक छोटी सी पतली रोटी या पपड़ी ले लो और परमेश्वर उस रोटी में है। ओह, यह अज्ञानता है, आत्मिक अज्ञानता। तो ठीक है, अब आप प्रोटेस्टेंट भी उसी बात को कर रहे हैं, चलकर जाते हैं और प्रचारक से हाथ मिलाकर और कहते हैं, मैं यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ, और वापस जाकर और इसमें से किसी भी तरह का जीवन जीते हैं और सीधे संसार के साथ जीते हैं। बाबुल की एक और मीनार, हम अब अंत की ओर आ रहे हैं। देखो, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा और पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, वही वो एक है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच एकता को लाएगा। आइए पता करते हैं, अब आइए देखें। अब मैं अगले 5 मिनट के लिए या कुछ समय के लिए आपका पूरा ध्यान चाहता हूँ। ध्यान दें, मनुष्य ने शैतान की योजना के नीचे कोशिश की कि कलीसिया को संप्रदायी एकता के अंदर लाए। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कलीसिया को शिक्षा के द्वारा एकता में लाए। आप ये जानते हैं, शिक्षा के जरिए से, संप्रदाय के जरिए से, वे ठीक अभी कोशिश कर रहे हैं। विश्व कलीसिया परिषद सभी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को एक साथ लाकर और उन्हें एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है? शैतान की एक योजना। आप कहते हैं, आप ऐसा कहने के लिए बहुत छोटे हैं। मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मेरे परमेश्वर का वचन बहुत बड़ा है। मैं आपको ये बता दूँ, आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन यह नहीं टलेगा। यह वो नहीं है जो इसे कहता है, यह तो वो है जिसने इस बात को पहले कहा था। मैं तो बस वही कह रहा हूँ जो उसने कहा, मैं उसके वचन को अंगीकार कर रहा हूँ। यह शैतान के नीचे है, यह यहाँ वचन में स्थापित हुआ है ठीक आज सुबह आपके सामने, कि यह शैतान की ओर से है। इनमें से जो कोई भी संगठन है, मनुष्य शैतान की योजना के नीचे लोगों को एकता के लिए संप्रदाय करने की कोशिश करते हैं। आप सभी आकर असेंबली ऑफ गॉड में जुड़ें, एकता में जुड़ें, चर्च ऑफ गॉड में जुड़ें, मेथोडिस्ट में जुड़ें, हम सब एक हैं। तुम ढोंगियों का झुंड, तुम भक्ति का भेष धरते हो और उसकी सामर्थ का इनकार करते हो, और परमेश्वर का वचन ठीक तुम्हारे सामने हिलाया गया और तुम इस पर आक्रमण करने से डरते हो। यदि तुम परमेश्वर के साथ हो तो परमेश्वर स्वयं को क्यों नहीं प्रकट करता है? तुम परमेश्वर के कार्य क्यों नहीं करते हो? तुम उस रूप को कैसे धारण कर सकते हो और घूमकर और उसका इंकार करते हो, यहाँ तक कि परमेश्वर के सच्चे कामों को भी बाल जबूल कहते हो, यह दिखाता है तुम कलीसिया के सदस्यों का शिक्षित झुंड हो। यीशु ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो। सही है, मुझे पक्का है कि आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या मतलब है। निश्चित रूप से कोई इस पर आक्रमण क्यों नहीं करता, आप जानते हैं कि इसके पीछे परमेश्वर है। परमेश्वर अपने वचन के साथ आगे बढ़ेगा। मनुष्य ऐसा करता है, इससे बाबुल की दूसरी मीनार बनती है। वो क्या करता है, वे दिखाने की कोशिश करते हैं, अब इस विश्व कलीसियाओं के परिषद की ओर देखें, एंग्लिकन, रोमन कैथोलिक, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल, और ये सभी एक साथ एकजुट हुए हैं। क्रिश्चियन साइंस और बहुत सी संप्रदाय जो यहाँ तक कि कुंवारी के जन्म का भी इनकार करते हैं, जो यीशु की दैविकता का इनकार करते हैं, उसे तीन लोग बनाते हैं, तीन देवताओं की आराधना करने की कोशिश करते हैं, कुंवारी के जन्म को इनकार करते हैं, उनमें से कुछ लहू का इनकार करते हैं, उनमें से कुछ उसके अद्भुत कार्यों का इनकार करते हैं, लगभग वे सभी ऐसा ही करते हैं, और तब इस प्रकार से एक होने का यत्न करते हैं। आप इसे कैसे कर सकते हैं, यह एक मनुष्य की बनाई मीनार है, यह वैसे ही गिरेगी जैसे बाबुल गिर गया। लेकिन परमेश्वर ने कहा ना बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा, प्रभु यूं कहता है, इसी तरह मैं अपनी कलीसिया को एक करूंगा, ना ही संगठन के द्वारा, ना ही शिक्षा के द्वारा, ना ही धर्म ज्ञानियों के द्वारा, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा, प्रभु यूं कहता है, मैं अपनी भीड़ों को इकट्ठा करूंगा। ओह प्रभु, और जब वो ऐसा करता है तो क्या होता है, और उसके चिन्ह उसी बात की गवाही को देंगे। इसी प्रकार इसराइल कह सकता था, इससे पहले मोआब के साथ मिश्रित हो, उनके ऊपर एक अग्नि का स्तंभ था। जी हाँ श्रीमान, वो क्या करेगा, वो गवाही को रखेगा, उसी प्रकार की एक गवाही। लेकिन जब वे अलग हो गए और उसी तरह परमेश्वर से अलग हो गए, तो उनके और परमेश्वर के बीच की एकता टूट गई, और वे मोआब और उनके साथ एक हो गए। जीत पूरी तरह विफल हो गई। वे 40 वर्ष तक जंगल में ही रहे, जब तक कि परमेश्वर ने एक और झुंड को खड़ा नहीं किया कि वहाँ जाकर और अपनी योजना को पूरा करे। बिल्कुल ठीक ऐसा ही उन्होंने किया। अब देखिए, लेकिन जब परमेश्वर अपनी आत्मा के साथ एक कलीसिया को एक साथ लाता है, उनके बीच में उनके पास जीवित परमेश्वर के चिन्ह होंगे। किस प्रकार के चिन्ह? जब परमेश्वर ने इसराइल को मिस्र से अलग किया, तो परमेश्वर ने मूसा और इसराइल को एक अग्नि के स्तंभ का चिन्ह दिया। यह सही है, एक भविष्यवक्ता। जब उसने अब्राहम को लूत से अलग किया, वहाँ उसके पास एक दूत आया था जो विचारों और हृदय के इरादों को परख सकता था। चिन्ह, हालेलुया। अब ये संप्रदाय जो इस कलीसिया में शामिल हो गए, मिस्र में एक एकता को बनाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वहाँ अदन और इत्यादि में वे इस बड़े प्रभाव के नीचे थे। लेकिन देखिए, मैं आपसे कुछ तो पूछना चाहता हूँ। जब परमेश्वर ने इसराइल को अलग किया, तो उसने उन्हें एक अलौकिक चिन्ह दिया, एक अग्नि का स्तंभ, उसने उन्हें एक भविष्यवक्ता दिया। उसने अब्राहम के साथ क्या किया, वो हर बार क्या करता है? मुझे उनमें से एक भी परमेश्वर द्वारा नियुक्त भविष्यवक्ता दिखाओ। उसने अपनी कलीसिया को प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं और शिक्षकों और सुसमाचारक के द्वारा एक साथ स्थापित किया। हालेलुया, वहाँ आप हैं, एक कलीसिया फिर से, जैसे उसने इसराइल को बाहर बुलाया। मैंने आपको बताया था कि मैं इस पर वापस आऊंगा। जी हाँ श्रीमान, ना उनमें कोई भी परमेश्वर द्वारा नियुक्त भविष्यवक्ता, नहीं श्रीमान, जैसा कि इसराइल और उनके बीच था। यह क्या है, फिर से शैतान की मीनार। अब यीशु का आगमन बहुत ही निकट है, यीशु का दूसरा आगमन। वह अपने चुने हुए लोगों को एक साथ इकट्ठा कर रहा है, मैं ये विश्वास करता हूँ। ओह, वे पूर्व और पश्चिम से आएंगे, जहाँ लोथ है वहाँ उकाब इकट्ठा होंगे। ओह प्रभु, ये क्या है, उसके पास उसकी एकता है, उसकी सच्ची एकता, जो स्वयं को उनके बीच में प्रकट कर रहा है। हर एक संप्रदाय में से, हर जगह से, हर प्रकार की कलीसियाओं से अपने चुने हुओं को एक साथ ला रहा है, अपने बच्चों को बाहर ला रहा है, ठीक उसके वचन के साथ पंक्ति में रख रहा है। क्या अब प्रभु यीशु का आगमन बहुत ही निकट है, न्याय का आगमन। वह अपने चुने हुओं को अपने साथ एकता में बुला रहा है, उसी प्रकार की सेवकाई के साथ जो उसके पास थी। आप जानते हैं कि मैंने कलीसिया के युगों में कैसे आकार को बनाया जहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ उस बड़ी मीनार के बारे में जिसे बनाया गया था, जिसे पिरामिड कहा गया, लेकिन उस पर कभी भी चोटी का पत्थर नहीं रखा गया था। याद रखें कि कैसे वे लूथरन आए, फिर अल्पसंख्यक में वेस्ली आए और फिर आगे पेंटिकॉस्ट तक, और अब वो क्या कर रहा है? उसी में से बुला रहा है। उसने क्या किया? उसने चुने हुए को बाहर बुलाया ताकि लूथरन को बनाए। उसने लूथरन में से चुने हुए लोगों को बाहर बुलाया ताकि वेस्लियन को बनाए। उसने चुने हुए को बाहर बुलाया उसमें से ताकि पेंटिकॉस्टल को बनाए। अब वह चुने हुए पेंटिकॉस्टल को बाहर बुला रहा है ताकि इसके अंदर आकर चोटी के पत्थर को बना सके। ठीक उसी प्रकार की सेवकाई ठीक इस पर आ रही है, सभी संप्रदायों से और जीवन के सभी क्षेत्रों से अपने बच्चों को बुला रहा है। उसने क्या किया है? उसने उनके साथ एक सच्चे शिक्षक, सच्चे भविष्यवक्ता रखे हैं, जो उसके वचन बाइबल के साथ बने रहते हैं। मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, यीशु ने कहा। यदि वह तब उसकी आवाज थी तो यह अब भी उसकी आवाज है। कोई भी चीज जो उस आवाज के विपरीत है तो यह भेड़ का भोजन नहीं है, वे इसका अनुकरण नहीं करेंगे। ओ भाई, पूर्व से, पश्चिम से, हर एक संप्रदाय में से, हर एक संगठन में से वे पूर्व और पश्चिम से आए हैं, एक साथ एकत्र हो रहे हैं। हम राजा के साथ भोज करेंगे, उसके अतिथि के रूप में भोजन करेंगे। ये यात्री कितने धन्य हैं। उसके पवित्र मुख को देवीय प्रेम से चमकते हुए निहारना, उसके अनुग्रह के धन्य सहभागी जो उसके मुकुट में रत्नों की तरह चमकेंगे। यीशु जल्द ही आ रहा है, तब हमारी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। हालेलुया। क्या हो यदि हमारा प्रभु इसी क्षण उन लोगों के लिए आता है जो पाप से आजाद हैं? तब क्या यह आपके लिए आनंद को लाएगा या फिर दुख और बड़ी निराशा को? लेकिन जब हमारा प्रभु महिमा में आता है तो हम उससे ऊपर हवा में मिलेंगे। हालेलुया। जी हाँ श्रीमान, यह क्या है? परमेश्वर द्वारा भेजे गए शिक्षकों के साथ जो सच्ची कलीसिया के लिए वचन के साथ बने रहेंगे। कोई भी संगठन कुछ भी कहता हो, वे जरा एक अंश भी नहीं हिलते, वे इसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं। भविष्यवक्ता न ही ढोंगी विश्वासी नाम का कहलाने वाला, लेकिन एक सच्चे भविष्यवक्ता के पास यहोवा यो कहता है होता है, और हर समय ठीक निशाने पर होता है। यही है जिसे उसने अपनी कलीसिया में भेजा है, यही है जो उसने कहा था कि वो करेगा। वचन पर विश्वास करता है, न ही संस्था पर, न ही सिद्धांत पर, लेकिन वचन पर। और ऐसा करके वह अपने आप को उनमें प्रकट करता है, अपने वचन की पुष्टि करते हुए उसी जीवन को बना रहा है जिसे उसने एक बार जिया, उसे फिर से जीते हुए उसके अपने वचन को पूरा कर रहा है। ओ प्रभु, ध्यान से सुने, पहला कुरिन्थियों 4:20 कहता है, परमेश्वर का राज्य ये उसका वचन है जो सामर्थ्य बना। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो पहला कुरिन्थियों 4:20, परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का वचन है जो सामर्थ्य बना। परमेश्वर का राज्य क्या है? ये आपके अंदर है, राज्य आपके अंदर है। और जब वचन वहाँ पर आता है तो यह वचन क्या आरंभ करता है? यह स्वयं को सामर्थ्य में बदल लेता है। यह बिल्कुल ठीक वही कहता है जो इसने कहा। आप यह नहीं कह सकते ये ऐसा कहता है, और यह इसे कहता है और इसे कार्य में लाता है। आपको वही बात को कहनी है जो यह कहता है, यही एक अंगीकार करना है, ना ही कहते हुए खैर यहाँ इसे थोड़ा चमका दिया गया है, मेरे पास ज्यादा बुद्धि होगी, मैं यहाँ बेहतर स्थिति में रहूंगा। आप वचन के साथ बने रहें, यहाँ है ये, देखो, और यह इसे सामर्थ्य प्रदान करता है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु ने संत यूहन्ना 14:12 में कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, नहीं मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ये ऐसा नहीं था जो उसने वहाँ कहा। उसने कहा, वह जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तुम जो चाहो मांगो और यह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, यह क्या है? आपको वचन के साथ जाना होगा, अपने आप को मार डालना होगा। मुझे विश्वास है कि हम में से बहुत से मित्रों ने पवित्र आत्मा को पाया है, लेकिन हम बस इतना ही हम में पवित्र आत्मा को पाते हैं कि हमें एक ऐसे स्थान पर लेकर आए जहां हम झूठ नहीं बोलना चाहते, हम चोरी नहीं करना चाहते, हम कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी कलीसिया के हर एक तत्व को भरना चाहता है। वो आपके विचारों को भरना चाहता है, और वो आपके मन को भरना चाहता है, वो आपके हर एक अंश को भर देना चाहता है, ताकि आप अपने आप से या अपनी सोच के लिए पूरी तरह संपूर्ण रूप से मर जाएं, बस इतना अधिक परमेश्वर में समर्पित हो जाएं, इतना तक कि उसका वचन बस ठीक आप में से होते हुए जी रहा हो। आप परमेश्वर के वचन के अलावा और कुछ नहीं जानते हो, बस उसके वचन के साथ बने रहते हैं। यही जीवन है, मेरा वचन जीवन है, यीशु ने कहा। उसे उनके साथ रखा गया है। बाइबल पर विश्वास करने वाले शिक्षक, भविष्यवक्ता, जो सच्चाई को कहते हैं, जो उसी भविष्यवाणी को कहते हैं, दिखाते हैं जो उन्होंने हमेशा ही युगों में से होते हुए दिखाया है। उसने क्या किया है? वो अपने आप को उनके बीच जीवित दिखाता है, अपने वचन की पुष्टि करते हुए। उसका वचन, परमेश्वर का राज्य ही परमेश्वर का वचन है, जो सामर्थ्य बना है। जबकि ये संप्रदाय मनुष्य के तर्क वितर्क पर, मनुष्य के तर्क वितर्क के ऊपर निर्भर रहते हैं। अब ध्यान से सुने, हमें मनुष्य के तर्क वितर्क पर निर्भर नहीं रहना है। नीति वचन तीसरा अध्याय पांचवा पद कहता है, अपनी समझ का सहारा न लेना। देखा, ऐसा न करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर का वचन कैसा प्रतीत होता है। आप कहते हैं, खैर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये बस इस तरह से ही अच्छा है। ये ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। इसे उसी तरह से ही लेना है जिस तरह से उसने इसे कहा है। हवा ने कहा, शैतान ने हवा से कहा, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, लेकिन असल में इसका मतलब ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है। और हवा ने इसका विश्वास किया, उसने इसका विश्वास किया, इसने एकत्व को तोड़ दिया, इसने संगति को तोड़ दिया, इसने एकता को तोड़ दिया, इसने संसार को तोड़ दिया, इसने जीवन को तोड़ दिया, इसने हर चीज को तोड़ दिया। और वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के एक वचन का अविश्वास करता है, ये सारी संगति को और सब कुछ तोड़ देता है। सही है, हम इसका विश्वास करते हैं या तो हम इसका विश्वास नहीं करते हैं। आओ हम इसके साथ बने रहें, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, और आओ हम इसके साथ बने रहें। बहुत सी बातों को मुझे यहाँ छोड़ना होगा, क्योंकि यह पहले ही समय निकल चुका है। जैसे बीते समय में जब मनुष्य ने ऐसा किया, इसने संसार के लिए परमेश्वर के न्याय को लाया, बाबुल की मीनार, केन के बच्चों का शेख के बच्चों के साथ मिलन, इसने न्याय को लाया। यह हमेशा ही संसार के लिए परमेश्वर के न्याय को लाता है, समझे? ओह, उसके साथ सच्चा एकत्व न्याय में ऊपर उठाएगा, इससे ऊपर, जैसे नूहा ने अपने परिवार के साथ उस न्याय में किया। धर्मी नूह और उसका परिवार न्याय से ऊपर उठ गया। उन्होंने क्या किया? वे निकल गए। भाई लीवेल, यदि आप इसे समझ लेते हैं तो यह यहाँ है। केवल यही वो प्रश्न है जिस पर हम असहमत हैं। वो विश्वास करते हैं कि कलीसिया न्याय में से होकर जाएगी। मैं ऐसा नहीं समझता, मैं ऐसा विश्वास नहीं करता। नूह कभी भी किसी भी न्याय से होकर नहीं गया, वह न्याय से ऊपर निकल गया। अब्राहम कभी भी आग में नहीं था, वह उस आग से बाहर था। इसराइल के न्याय में नहीं था, इसे आग में से अलग किया गया था, न्याय से बाहर था। कलीसिया न्याय के ऊपर पवित्र आत्मा के नाव में सवार होकर धरती पर से ऊपर उठ जाएगी। संसार में कलीसियाओं के परिषद की यह चीज और कुछ नहीं, एक मूर्ख कुवारी की हिलावट को छोड़, जिसे यहाँ धरती पर छोड़ दिया जाएगा ताकि मसीह विरोधी के हाथों में पड़ सके। लेकिन परमेश्वर की सच्ची कलीसिया पुराने समय के नूह की तरह तैरती रहेगी और महिमा के अंदर चली जाएगी। ये उतना ही निश्चित है जितना मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। इसलिए वो उन्हें एक साथ इकट्ठा कर रहा है। यही है जो आज आवाज आगे की घोषणा कर रही है। यही है जो परमेश्वर कर रहा है, जो लॉस एंजलिस से एक को लेकर और एक को फिलेडेल्फिया से लेकर और एक को जॉर्जिया से और इत्यादि से लेकर एकत्र कर रहा है। उन्हें एक साथ इकट्ठा करता है, उसके लोग जो जीवित परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की इच्छा रखते हैं। जैसा कि यह नूह के दिनों में था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा, जिसमें थोड़े लोग ही बचाए गए थे, बस बहुत ही थोड़े। तो ठीक है, हमारे पवित्र आत्मा का जहाज ठीक परमेश्वर के न्याय के ऊपर तैरता रहेगा, क्योंकि हमारा पहले ही न्याय किया गया है जब हम यीशु को अंगीकार करते हैं और उसने हमारे न्याय को ले लिया। ये संप्रदाय हालांकि बहुत ही हठीले हैं, वे हवा के जैसे हैं। वो परमेश्वर के वचन की परवाह किए बिना अपनी बुद्धि को चाहती थी। निम्रोद अपनी मीनार को चाहता था, परवाह किए बिना, वचन हो या ना हो, वे हठीले थे। हवा बेहतर जानती थी, शेत को इससे बेहतर समझती कि वो उन सुंदर महिलाओं के बहकावे में ना आए। इज़राइल भी भली भांति जानता था कि उसे उस व्यभिचार में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे ही आप जानते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने हठीले होते हैं, वचन हो या वचन ना हो। परमेश्वर धन्य है, मेरी माँ प्रेस्बिटेरियन थी, मैं भी वही होने जा रहा हूँ। तब आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहना ही केवल एक चीज है जो आप तब कर सकते हैं। परमेश्वर आपके पापी प्राण पर दया करे। आप भला इससे कैसे बचकर निकलेंगे जबकि आप जानते हैं कि ये सच्चाई है? और यदि आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं और फिर भी नहीं सोचते कि यह सत्य है, तब वहाँ आपकी आत्मिक समझ में कुछ तो गड़बड़ है। यह बिल्कुल सही बात है। पूरे राष्ट्र भर में देखें और देखें कि ये चीजें कहाँ घटित हो रही हैं। हम अंत के समय पर हैं मित्रों। क्या हम अभी कलीसिया के युगों में से होकर गए हैं और जानते हैं कि लौकिकियन कलीसिया युग में क्या होने जा रहा है? क्या हम अभी इसमें से होकर नहीं आए हैं? आप समझे मेरा क्या अर्थ है? हम अंत के समय पर हैं। परमेश्वर चुने हुओं को पृथ्वी की चार दिशाओं से एकत्र कर रहा है। उसने कहा कि वह दूतों को भेजकर और उन्हें इकट्ठा करेगा। क्या यह सही है? उन्हें एक साथ इकट्ठा करता है, उन्हें जंगली झाड़ियों से अलग करता है। आमीन। जंगली झाड़ियाँ जलाई जाएंगी, गेहूं को नहीं। सही है, लेकिन वे बहुत ही हठीले हैं। उन्हें ये मिले या न मिले, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, लेकिन परमेश्वर के चुने हुओं को उनके बीच में से बाहर आने की आज्ञा दी गई है। अपने आप को अलग करो। परमेश्वर जो कहता है और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। उनकी सांसारिक चीजों को मत छुओ और मैं तुम्हारा पिता या परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। अपने आप को अविश्वासियों के साथ जुए में ना जूतो, लेकिन इसमें से बाहर आ जाओ। परमेश्वर संसार से अलगाव को चाहता है। वह स्वयं आपके साथ एक होना चाहता है और मनुष्य की बनाई हुई संप्रदाय की योजना, संगठन की योजना या किसी भी मनुष्य की बनाई हुई शिक्षाएं कभी भी स्थिर नहीं रहेंगी। यह परमेश्वर को लेता है, पवित्र आत्मा आप में, ताकि आपको परमेश्वर से एक करे। और आप कैसे जानते हैं कि आपको यह मिल गया है? वो पवित्र आत्मा जिसने वचन को लिखा हर एक वचन के साथ गवाही को देगा, और वही चीजें जो पवित्र आत्मा ने पुराने नियम में की वो नए नियम में करेगा। वो अभी ठीक वही करेगा, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। और आप संस्थाओं के साथ और संसार के साथ जुए में ना जूते। आप उनके साथ जुए में नहीं जूते हैं। अपने आप को उनके बीच में जुए में ना जूते, लेकिन उनके बीच में से बाहर आ जाएं। आप मसीह के साथ जुए में जूते हुए हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के साथ जुए में जूते हुए हैं। बाइबल कहती है अंत के दिनों में वहाँ कलीसियाएं होंगी, बाबुल की तरह एक और मीनार होगी। वे एक भक्ति का भेष तो धरते हैं और परमेश्वर के वचन और सामर्थ का इनकार करते हैं, उसके वचन की सामर्थ का। और वचन क्या है? परमेश्वर का राज्य क्या है? इससे पहले कि हम कभी राजा की प्रजा बन सकें, हमें उस राज्य का हिस्सा होना होगा। कितने लोग ये जानते हैं? कहें आमीन। तो आप राज्य में कैसे आते हैं? परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का वचन है जो वापस सामर्थ में बनाया गया है। आमीन। सामर्थ बना पाप को दूर करते हुए, चिन्हों को देते हुए। किस प्रकार का चिन्ह? यदि यह वही वचन है जिसने मूसा को बाहर लाया, तो यह उसी चिन्ह को लेकर आएगा। वही चीज जिसने गुनगुने लूत को अलग किया। अब हम जानते हैं कि लूत गुनगुना था और यीशु ने कहा कि यह अंत समय का चिन्ह होगा। गुनगुना लूत वहाँ पर बैठा हुआ था, वो धार्मिक था निश्चय ही, वो और उसकी पत्नी। और वे सभी प्रकार की पार्टियों में आते जाते थे, और वो नगर का मेयर था। और ओह, वहाँ पर बहुत सारी चीजें चल रही थी। वह बहुत ही धार्मिक था, वो सुसमाचार प्रचारकों का मनोरंजन कर सकता था और उन सारे लोगों का जो वहाँ पर आते थे, उस तरह से वो ठीक था। लेकिन ओह भाई, वह वो चुना हुआ नहीं था। देखो क्या घटित हुआ। क्यों? वही परमेश्वर जिसने अलग किया और अब्राहम के पास आया और उसे उसके अलगाव का प्रमाण दिखाया। हे परमेश्वर, मैं किस तरह से चाहता कि काश मैं कुछ तो ऐसा कर पाता कि आप इसे देख सकते। परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया कि उसने खुद को अलग किया था, उसने उसे इसकी पुष्टि को दिखाया कि वो उसके साथ था और ठीक उसके बीच में था। और यीशु ने कहा वही बात अंत के दिनों में जगह लेगी। ना ही एक राष्ट्र अब्राहम था, वो अल्प संख्या में था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। तब उसने उसे अलग किया था। हमें इस अंतिम दिनों में अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। और यदि परमेश्वर ने मूसा के लिए एक चिन्ह दिया, इसराइल के लिए अभिषिक्त भविष्यता एक अग्नि का स्तंभ, अब्राहम को एक चिन्ह दिया, उसने इसराइल को एक चिन्ह दिया, उसने चेलों को एक चिन्ह दिया, वही चिन्ह, हर बार वही चिन्ह, अग्नि का स्तंभ। पौलुस जब वो वहाँ दशमिश के रास्ते की ओर जा रहा था, वहाँ उसके सामने एक अग्नि का स्तंभ चमका, जिसने यहाँ तक उसकी आंखों को भी अंधा कर दिया, उसे उसके घुटनों पर गिरा दिया। इसे किसी और ने नहीं देखा, हर कोई आसपास ही खड़ा है, उन्होंने इसे नहीं देखा। और एक आवाज ने कहा, शाऊल तो मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उसने कहा, मैं यीशु हूँ, एक चिन्ह। और वो क्या था? अन्य जातियों के लिए प्रेरित। आमीन। यहाँ हम अंत समय में हैं, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उस रैप्चर के लिए तैयार हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। कुछ मिनटों के लिए अपने आप को स्थिर रखें, जब तक कि हर एक तत्व पवित्र आत्मा से भर नहीं जाता है, तब वह ऊपर चली जाएगी। ओह प्रभु, वो अपने लोगों को अपने आप में एक साथ बुला रहा है, अपने आप से सच्चे एकत्व में, क्योंकि यह उसका एक पवित्र आत्मा है। एक आत्मा के द्वारा हम सब ने व्यक्तिगत रूप से एक देह में बपतिस्मा लिया है, सामूहिक रूप से यीशु मसीह की देह। और यीशु मसीह अपनी आत्मा के साथ हमारी देह में रहता है, कलीसिया के लिए काम कर रहा है और उन्हीं चीजों को कर रहा है जो चीजें उसने की, एक चिन्ह के रूप में संसार के लिए, एक चिन्ह के रूप में कि हम अंत के दिनों में हैं, रैप्चर के लिए तैयार हो रहे हैं। ओह, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्या आप नहीं करते? मेरे पास यहाँ अभी भी एक किताब है, लेकिन मैं इसे अब और नहीं ले सकता, हमें बहुत देर हो रही है। हो सकता है इसे किसी और समय ले लूंगा। हम अंत में हैं, एकत्व। क्या आप परमेश्वर के साथ पूरी तरह एक हुए हो? इसी तरह से आपको एक होना है। जी हाँ, हम उसके साथ एक होने जा रहे हैं, इतना तक वो मन जो मसीह में था आप में हो। तब मसीह उसका अपना मन जो आप में होता है, ये हर एक वचन को पहचान लेगा जो उसने लिखा है। इसने प्रेरितों में किया, सही ढंग से वचन को विभाजित करते हुए, जो कि सच्चाई है। देखो पवित्र आत्मा, यदि यह सच्चाई है, तब वो उसी चिन्ह को लाने के द्वारा इसकी गवाही को देगा जो उसने मूसा के लिए दिया था, वही चिन्ह जो उसने अब्राहम के लिए दिया, वही चिन्ह जो उसने मसीह के द्वारा दिया, वही चिन्ह जो उसने पौलुस के द्वारा दिया। हम अंत के समय में हैं, उसने कहा कि ऐसा होगा। हम अंत के समय में हैं, कलीसिया सामूहिक रूप से एक एकत्व में एक साथ एकत्र हो रही है, एक यहाँ से और एक वहाँ से इसे बना रहे हैं। उसने कहा, एक खेत में दो जन होंगे, मैं एक को लूंगा, एक। देखो, एक खेत में दो जो कि दिन के समय में है, कटनी, मैं एक को ले लूंगा और एक को छोड़ दूंगा। वहाँ एक बिस्तर पर दो जन होंगे, संसार के दूसरी ओर मैं एक को ले लूंगा और एक को छोड़ दूंगा, मनुष्य के पुत्र के आने पर। और यह बहुत ही निकट है, यह बहुत ही नजदीक है। नहीं नहीं आदम, आदम, हवा आदम, मैं तुम पर चिल्लाऊंगा कि शैतान के झूठ पर अब और कान नहीं लगाना। परमेश्वर के वचन के साथ बने रहो, यह यहोवा यो कहता है, उसके वचन के साथ बने रहो। इससे अलग होना ये परमेश्वर के साथ तुम्हारी संगति को तोड़ना है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का एकत्व। तब यदि आप कहते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा है और यह वचन के साथ सहमत नहीं होता है, तो आप परमेश्वर के साथ एकत्व में नहीं हैं। यह परमेश्वर का एकत्व है, जब आप वो आत्मा जो आपके पास है इस वचन के साथ सहमत होता है और इस वचन को प्रगटीकरण में लाता है और इस वचन की सामर्थ को बनाता है कि उसी तरह से कार्य करता है जैसे इसने वहाँ किया। आइए हम सब मिलकर कहें, परमेश्वर के साथ एकत्व में होना ही परमेश्वर की आत्मा का आप में होना है। वचन के साथ सहमत होते हुए, सारे वचन के साथ, संपूर्ण वचन के साथ, और इसे सामर्थ्य में प्रगटीकरण में लाना, आप वहाँ हैं। यही परमेश्वर के साथ एकत्व है। जब वो सामर्थ्य मुझ में कार्य करती है, आप में कार्य करती है, तो हम एक हो जाते हैं। आमीन। भाई किड, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ में और आप में कार्य करती है, तो वहाँ कोई असहमति नहीं होती, वहाँ पर वचन होता है, यह काम करता है। आमीन। यह इसे वही बनाता है जो यह है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप में देहधारी हुआ, वचन आपके बीच सामर्थ बनता है, हर एक वचन। अब याद रखें, शैतान उस वचन का बहुत बड़ा हिस्सा लेता है, लगभग इसमें का 99.99%, इसके 100 में से 99.99% को लेता है, वह उसे एकदम सही जैसा बना देता है, लेकिन फिर वो यहाँ से हट जाएगा और यही वो एक है जो ठीक वहाँ पर मृत्यु का कारण बन जाता है। यह जंजीर को ठीक बीच में से तोड़ देता है, आप नीचे गिर पड़ते हैं। हर एक वचन, यीशु ने क्या कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, लेकिन हर एक वचन से, ना ही परमेश्वर के कुछ ही वचनों से वो जीवित रहेगा, ना ही परमेश्वर के वचन के 99.99% से, लेकिन हर एक वचन के द्वारा जो मनुष्य के मुख से निकलता है उसके द्वारा मनुष्य जीवित रहेगा। शैतान उसे वहाँ ऊपर ले गया और कहा, ऐसा लिखा है, देखो जैसे उसने हवा से कहा, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। यीशु ने कहा, और ऐसा भी लिखा है। उसने कहा, ऐसा लिखा है, वह दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। बाइबल ऐसा कहता है, लड़के वो एक विद्वान है, ऐसा लिखा है, वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। उसने कहा, ऐसा भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। उन्होंने कहा, हमारे पास वचन है, प्रेरितों के काम 19, हमें यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा मिला है। पौलुस के पास कुछ और था, उसने कहा, यह अब और काम नहीं करेगा। देखा, यूहन्ना ने केवल बपतिस्मा दिया, उसने यूहन्ना के शब्द पर अविश्वास नहीं किया। उसने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि यूहन्ना ने क्या कहा। यूहन्ना ने कहा कि उसने मन फिराव का बपतिस्मा दिया, न ही पापों की क्षमा के लिए, बलिदान को मारा नहीं गया था। देखो, उसने कहा, उसने मन फिराव का बपतिस्मा दिया, यह कहते हुए कि तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए जो आने वाला है। और जब उन्होंने इसे सुना तो उन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। पौलुस ने वचन से परिपूर्ण होकर उन पर अपने हाथ रखे और पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। वे भविष्यवाणी करने लगे, अन्य जुबान में बोलने लगे, परमेश्वर को ऊंचा उठाते हुए। और क्या ही समय था, ओह प्रभु, यह कितनी बड़ी कलीसिया थी, 12 लोगों की। जी हाँ, ओह परमेश्वर बड़ी संख्या में व्यवहार नहीं करता, वो ईमानदार हृदय में व्यवहार करता है। हमारे पास उस प्रकार का हृदय होने दो, क्या आप उससे प्रेम करते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। ओह मेरे प्रिय भटके हुए, क्या आपने मोआब की बेटियों को देखा है, या आपने बेटियों को, मैं कलीसियाओं की बात कर रहा हूँ, केन की बेटियों को देखा है, वे वचन से कितनी दूर भटक गए हैं? क्या आपने, मेरे बहुमूल्य मित्र, क्या आपने अंत के दिनों में ध्यान दिया है कि ये बातें घटित हो चुकी हैं? क्या आपने हाल ही में इस विषय पर ध्यान दिया कि किस तरह से परमेश्वर का वचन प्रकट हुआ है, किस तरह से वो बेदारी जो कभी हुई वो अब कैसे ठंडी पड़ गई है, वहाँ अब अधिक कुछ नहीं बचा है। ये क्या है? यह तूफान से पहले की खामोशी है, न्याय तैयार है। क्या आप इन बातों की ओर ध्यान दे रहे हैं? क्या आपने वचन की तुलना वचन से की है? बाइबल के वचन की तुलना बाइबल के वचन से, प्रमाण की तुलना प्रमाण से की है? क्या आपने यीशु के वचन की तुलना की है, जो उसने कहा कि अंतिम दिनों में शैतान यह बहुत ही नजदीक होगा, जैसे कोई वास्तविक चीज हो, इतना तक कि यदि यह संभव हो तो हर एक को भरमा दे, उन चुने हुए को छोड़, उस चुने हुए को। जरा सोचें कि वचन की शिक्षा इतनी नजदीक होगी। ओह, हम पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं, परमेश्वर सदा धन्य हो, हमारे पास पवित्र आत्मा है, हम अन्य जुबान में बोलते हैं और फिर पलट कर और वचन का इनकार करते हैं। जी हाँ, देखो, यदि संभव हो तो चुने हुए को भी भरमा देगा। यदि यहाँ कोई ऐसा है जो परमेश्वर के साथ सही नहीं है, यदि यहाँ कोई तो है जो बीमार या पीड़ित है, यहाँ पर रुमाल और कुछ चीजें रखी हुई हैं, मैं उनके ऊपर प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मैं परवाह नहीं करता कि आपको क्या आवश्यकता है, किताब की हर एक प्रतिज्ञा आपकी है, यह आपकी है। अब मैं आपके लिए वचन को लाया हूँ, इसे उत्पत्ति से लेकर आज के दिन तक लाया हूँ, जिसमें हम रह रहे हैं, बस उन स्थानों में से लेते हुए और आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा सैकड़ों स्थानों पर से मैं ले सकता था, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें आप देख सकते हैं कि इस संगठन की चीजें बाहर हैं। यह शैतान की एक झूठी धारणा है जो मनुष्य को संगठित करने का प्रयास कर रहा है, उनके खुद के मन और सोच की एकता के साथ, जबकि यह पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होता है। देखो, बाइबल ने कहा, यीशु ने कहा कि वे इसे स्वीकार भी करेंगे। आप देखिए, यदि संभव हो तो चुने हुए को भी भरमा दे। आप देख रहे हैं कि कि हम कहाँ खड़े हैं। अब परमेश्वर के इस वचन को उस विश्वास के हाथ में उठाएं। आज सुबह आपको किस चीज की आवश्यकता है? आपको यीशु मसीह के नाम में पानी के बपतिस्मे की आवश्यकता है। तालाब खुला हुआ है। आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की आवश्यकता है। वो अपना मार्ग बनाते हुए आपके भीतर जोर देने की कोशिश कर रहा है। आपको चंगाई की आवश्यकता है। क्यों? वही पवित्र आत्मा स्वयं, वो वचन जो सामर्थ बना है, ठीक अभी यहाँ पर है। वही परखने की सामर्थ अब यहाँ इस श्रोतागण की ओर देख रही है और उस प्रकाश को एक चमक की तरह गोल गोल घूमते हुए देख रही है। क्या मैंने आपको कभी कुछ गलत बताया है? क्या मैंने कभी, जैसे भविष्यवक्ता ने इसराइलियों से कहा, इससे पहले कि उन्हें उनका मनुष्य द्वारा बनाया गया राजा मिलता, उसने कहा, क्या मैंने तुम्हें कभी कुछ बताया है? क्या मैंने कभी तुम्हारे पैसे लिए हैं? क्या मैंने कभी वहाँ आकर और तुमसे पैसों के लिए विनती की है और यहाँ वहाँ घूमकर और बड़े बड़े महलों में रहा हूँ और बड़ी बड़ी चीजों को बनाया है और तुमसे तुम्हारे पैसों को लिया है? क्या मैंने कभी तुमसे एक पाई भी मांगी है? कभी नहीं। क्या मैंने कभी तुम्हें प्रभु के नाम में कुछ भी बताया है सिवाय उसके जो परमेश्वर ने इसे पूरा किया हो? क्या मैंने कभी उसके नाम से कुछ ऐसा बोला है सिवाय इसके जो ये था? क्या मैंने कभी तुम्हें सभा के बीच देखा गया वो दर्शन बताया है जिसमें ठीक वही व्यक्ति उठ खड़ा हुआ था, चाहे वो अजनबी हो या जो कोई भी हो, लेकिन उसने यही कहा, यह सच है? क्या मैंने तुम्हें कभी कुछ गलत बताया है? फिर अब मुझे तुम्हें बताने दो, यहोवा यो कहता है, पवित्र आत्मा को पालो, वो आत्मा जो परमेश्वर के वचन को उन विश्वास के हाथों में ले लेगा, वहाँ से उस ओर चला जाएगा। सारा राज्य तुम्हारा है, यह तुम्हारा है। बच्चों, आप जॉर्जिया से क्यों आए हैं? सारे देश भर से, ओहियो से, कैंसास से, हर जगह से, एक छोटी सी सभा के लिए। मैं सोचता हूँ कि टेप अब बंद किया गया है, इसलिए मैं यह कह सकता हूँ, देखा, आप इस तरह से क्यों आ रहे हैं? यह आपसे कौन करवाता है? यह क्या है? मैं यहाँ सैकड़ों मील दूर से अरकनसास से आए लोगों को देखता हूँ। पिछली रात कैनसास शहर से आ रहा था एक छोटा सा पॉलिस भाई जो वहाँ पीछे खड़ा हुआ था, आया, अगुवाई हुई, कहा, भाई ब्रैनम, जब से मैंने पहले आपके विषय में कनाडा में बहुत वर्षों पहले सुना, वे चीजें जो आपने देखी हैं और आपने की हैं, मैंने उनकी पूरी तरह से जांच की है, ठीक आगे और पीछे, ऊपर और नीचे से, और कहा, उनमें से एक भी चीज कभी गलत नहीं हुई है। वो शायद एक पॉलिस कैथोलिक है और वो यहाँ आकर टेप को लेता है, बाहर जाकर और उन्हें चलाता है, विरोध का सामना करता है। वे सेवक जिन्हें मेरे साथ रहना चाहिए और हमारी सहायता करना चाहिए, लेकिन उसकी सामर्थ का इनकार करते हैं, वचन की सच्चाई का इनकार करते हैं और पवित्र आत्मा के होने का दावा करते हैं। मैंने अपने आप को भविष्यवक्ता कहकर नहीं बुलाया है, आपने ऐसा कहा है, लेकिन यदि ऐसा है तो फिर प्रभु का वचन कहाँ से आता है? हम कैसे कह सकते हैं कि वो सच है या नहीं, यदि उसे समर्थन करने के लिए कोई आधार ही ना हो? यह यहाँ पर परमेश्वर का वचन है, लिखित वचन, और फिर यदि लिखित वचन समर्थन करता है तब उस वचन में परमेश्वर ही होता है जो उस वचन को सत्य बनाता है। पौलुस ने कहा, मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूँ। अब यदि आपको बीमारी से चंगाई के लिए परमेश्वर की आवश्यकता है, उद्धार के लिए क्या, या छुटकारे के लिए, आप में से कुछ महिलाएं जिनके पास इतना अनुग्रह भी नहीं है कि अपने बालों को बढ़ने दें, आप में से कुछ पुरुष जिनके पास इतना अनुग्रह भी नहीं है कि सिगरेट पीना छोड़ दें, आप में से कुछ प्रचारकों के पास इतना अनुग्रह भी नहीं है कि यीशु मसीह के नाम में पानी के बपतिस्मा की सच्चाई को स्वीकार करें, आप में से कुछ बीमार लोग जो बीमार हैं और मृत्यु के कगार तक बीमार पड़े हैं, तो आज सुबह इस वचन को क्यों नहीं स्वीकार करते? अब मैं आपको बताऊंगा, हमारे बीच में ये देह है, इस वचन को अपने हाथ में ले लें। यहाँ दीवार पर प्रभु के दूत की तस्वीर टंगी हुई है, वही एक जिसने इसराइल के बच्चों की अगुवाई की, वही एक जिसने पौलुस से भेंट की, वही एक जो मसीह में था, और वही पवित्र आत्मा आप में है, आप में है, आपको एक के रूप में एकजुट कर रहा है। कौन सी बात हमारे हृदयों को सैकड़ों मील से एक साथ खींच कर लाती है? वहाँ देश में ऐसी कोई बात भी नहीं है, वे तो वचन के लिए आ रहे हैं। वहाँ एक लहू से भरा हुआ सोता है जो इमैनुअल के नसों से निकला है, जहाँ अविश्वासी लोग बहाव में गोता लगाते हैं और उनके सारे दोष के दाग से छूट जाते हैं। जब से मैंने विश्वास से उस धारा को देखा है जो आपके बहते घाव से बहती है, छुड़ाने वाला प्रेम मेरा विषय रहा है और मेरे मरते तक रहेगा। हमारे स्वर्गीय पिता यहाँ पर कुछ रुमाल और दास्ताने रखे हुए हैं, हो सकता है उन्हें डाक में भेजा जाए। मैं नहीं जानता कि इन्हें यहाँ किसने रखा है, हो सकता है बिली ने, हो सकता है यहाँ सभा के लोगों में से किसी ने। मैं बस अब ऐसा करने के लिए महसूस कर रहा हूँ, प्रभु मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, एक मनुष्य होने के नाते मुझ में कुछ भी नहीं है। मैं अपनी मानवीय समझ पर निर्भर नहीं रह सकता। मैं नहीं समझता कि ऐसा क्यों है, लेकिन जो आपने कहा मैं उसका अनुकरण कर रहा हूँ। उन्होंने पौलुस की देह में से रुमाल और वस्त्र को लिया और दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकल गई। ऐसा इसलिए नहीं था कि वो एक महान व्यक्ति था, यह इसलिए था क्योंकि वचन और सामर्थ्य में परमेश्वर उसके साथ था और उसने कभी भी प्रेरितों से परामर्श नहीं किया। लेकिन जब वे एक साथ मिले तो पाया कि एक ही सुसमाचार, बपतिस्मे का वही रूप, हर एक चीज वही थी जो वे कर रहे थे, वे एक ही सहमति में थे। अब मैं मांग रहा हूं प्रभु इन बहुमूल्य लोगों के लिए जो आप पर विश्वास कर रहे हैं कि आप उन्हें चंगा करें। वे जो श्रोतागण में हैं उन्हें चंगा करें प्रभु, उन्हें पाए उनका विश्वास बस ऊपर पहुंचे और ठीक अभी उस वचन को पकड़े रहे और कहे, ट्यूमर, बीमारी, बुराई, तुम्हें अब जाना ही होगा, मैं परमेश्वर की तलवार से काटता हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ, मेरा विश्वास मजबूत है, मैं तलवार को गहराई तक चला रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जा, मैं चंगा होने के लिए अपनी सीट से उठ रहा हूँ। मैं अपने पिता पर, अपनी बहन पर, अपने बच्चे पर, अपने पड़ोसी पर अपना हाथ रखता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आपका वचन सत्य है, मैं आपके साथ एकत्व में हूँ। वे काम जो आपने कहा उसे आपने किए, हम भी वही करेंगे। प्रभु परमेश्वर, मैं हर एक वचन पर विश्वास करता हूँ और मैं आगे आ रहा हूँ, इसका दावा करने के लिए आगे आ रहा हूँ कि इसे आज सुबह को ले लूँ। हे परमेश्वर, मैं किस तरह से सोच सकता हूँ जब वो कलीसिया आगे बढ़ रही थी, जब मूसा वहाँ समुन्द्र के पास आकर थोड़ा सा डर गया तो उसने प्रभु की दुहाई देना आरम्भ किया और प्रभु ने कहा, तू मेरी दुहाई क्यों देता है, तू किस लिए मेरी दुहाई देता है, बोल और आगे बढ़, क्या मैंने तुझे इस काम के लिए आदेश नहीं दिया है, बोल, क्या बोलना है, परमेश्वर का वचन ये तुम्हारे अंदर है, बोल और आगे बढ़, मेरे लिए दुहाई नहीं दे, आगे बढ़। और प्रभु परमेश्वर, आज मैं प्रभु यीशु के नाम में आया हूँ, मैं इस विश्वास की तलवार को लेकर आया हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य के एकत्व का दावा करते हुए, उसके पुत्र यीशु मसीह की दया और बलिदान में से होते हुए, मैं हर उस शैतान को चुनौती देता हूँ जिसने किसी को भी इस भवन में किसी भी तरह से बांध कर रखा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, पुरुष हो या महिला। मैं हर बीमारी को चुनौती देता हूँ, मैं हर संदेह को चुनौती देता हूँ, मैं हर डर को चुनौती देता हूँ, मैं हर एक चीज को चुनौती देता हूँ जो धर्म भ्रष्ट है। इस श्रोतागण को यीशु मसीह के नाम में छोड़ दे, इस सभा के लोगों में से बाहर आ जा, जिससे कि हम परमेश्वर के साथ एक हो सकें और बिना बीमारी या डर के परमेश्वर की सेवा कर सकें। होने पाए वो सामर्थ जिसने हमें परमेश्वर के साथ एक कर दिया, अभिषिक्त लोगों के बीच वो शैतान कैसे अपनी आवाज उठा सकता है, कैसे वो शैतान वहाँ पर खड़े होकर और अपने आप से गोलियात की तरह अपनी आवाज को उठा सकता है। जब दाऊद छावनी के अंदर आया और कहने लगा, तुम्हारा मतलब है कि तुमने उस खतना रहित फिलिस्तीनी को वहाँ खड़े होने दिया और जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारने दिया। हे परमेश्वर, पुरुषों और स्त्रियों को आत्मा की सामर्थ्य में ऊपर उठाएं, वो अपरिवर्तित उस मुरझाए हुए शैतान को जिसने मनुष्य जाति को इस युग में से होते हुए नुकसान पहुँचाया है। यहाँ खड़े होकर और जीवित परमेश्वर की कलीसिया को चुनौती दे, शैतान बाहर आ और छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। अब तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि एक तलवार को उठा सको, अब जबकि तुम्हारे पास परमेश्वर के वचन में इतनी समझ है कि इसे अपनी व्यक्तिगत संपत्ति होने का दावा कर सकते हो, जो अब अपने हाथ में परमेश्वर के वचन को उठा सकता है, इसे विश्वास के हाथों में थामे हुए और कह सकता है, मैं अपना पक्ष प्रभु के साथ लेता हूँ। अब से मैं अपने परमेश्वर के साथ एकत्व में हो जाऊंगा। मैं इस वचन में आत्मा की तलवार को चलाऊंगा और मैं शैतान को हर उस प्रतिज्ञा से काट दूंगा जिसकी परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा की है। यदि आप इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं तो मैं आपसे पूरे हृदय से ईमानदारी से कहता हूँ। यीशु मसीह के नाम में अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और इसे स्वीकार करें। क्या आपका सचमुच यही अर्थ है? क्या आप ईमानदार हैं? क्या वचन आपके हाथ में है? क्या आपका हाथ आपका विश्वास है? अपने भौतिक हाथ को परमेश्वर की ओर उठाएं, कहें, परमेश्वर इसके द्वारा, अपने उठे हुए हाथों के द्वारा मैं अपने संपूर्ण जीवन की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं अपने प्राण की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं अपने विचारों की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं हर एक चीज परमेश्वर के वचन के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ। पवित्र आत्मा अब मेरे विश्वास को ले और मुझे उस चीज को दे, मुझ में से हर एक संदेह को काट कर निकाल दे, और विश्वास के द्वारा मैं इसी क्षण उस प्रतिज्ञा को ग्रहण करता हूँ जिसके लिए मैं मांग रहा हूँ। यदि आप इसे विश्वास करते हैं तो कहें आमीन। अभी कहें आमीन, फिर से आमीन आमीन आमीन। तब यदि आप अपने पूरे हृदय से ऐसा ही चाहते हैं तो यीशु मसीह के नाम में मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिलेगा। आमीन। आप इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई नेविल,